हमारे डॉक्टर सतीश भाई, हम सभी एक हाथ की ताली से हार्दिक स्वागत करते हैं। हार्दिक, आप हार्ट के डॉक्टर हैं। डॉक्टर सतीश भाई नीचे हमारी जो हॉस्पिटल है वो संभाल रहे हैं। आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, परंतु विशेष बात यह है कि आपने एक बाबा के यज्ञ में एक नया चैप्टर खोल दिया है, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं, कैड कहते हैं। कैड प्रोजेक्ट से एक नया आयाम कहेंगे, नया चैप्टर कहेंगे खुला है कि भाई बीके लाइफस्टाइल से बाबा की याद और मूल्य क्लास और शब्दारणाएं और जो भी बताते हैं, 3D ट्रीटमेंट बताते हैं, उससे जो हृदय की नलियां जो बंद हो गई होती है, ब्लॉकेज होते हैं, वो खुल जाते हैं। बहुत बड़ी चीज है ना। और इसका कारण यह है कि आपका बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, मेडिकल फील्ड में तो है ही, परंतु उसके पहले खुद के साथ ज्ञान का गहन चिंतन करना, योग लगाना और अपनी लाइफस्टाइल को बना के रखना, वो आपकी विशेषता है। और विशेष करके आप हमारे जो भी बड़े भाई दादियां हैं, बड़े भाई हैं, उनकी आप विशेष संभाल करते हैं। हमारी दादी प्रकाशमणि जी का भी आपने बहुत संभाल किया, अंत तक सेवा किया, वो भी अनुभव सुना देना आपका, लास्ट वाला अनुभव सुना दादी का। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है आपने चिंतन के आधार पर, और वो है जो सूक्ष्म बातें होती है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, सूक्ष्म वतन क्या होता है, वहां की सब क्या रीत है, वो सभी आप बताएंगे। जो भी क्वेश्चन वगैरह हो वो भी आप पूछ सकते हैं, परंतु पहले आप सुन लेंगे डॉक्टर सतीश भाई। ओम शांति।
ओम शांति। कल की मुरली याद है आपको? आप सबको कल की मुरली याद है? क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने कहा था, अपने आप की जांच करो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। और गीत याद है कल का? मुखड़ा देख ले प्राणी। वरदान याद है? वरदान याद है? अपना क्या करना है? संकल्प, समय, संकल्प, बोल और कर्म ईश्वरी सेवा में लगाकर संपूर्ण वफादार भाव। याद है? राज की मुरली याद है? याद है कि नहीं? भूल गए? दे दे के सब धर्म भूल, अपने को आत्मा समझो। ब्रह्मा बाबा समान संपूर्ण टेस्टी बनना है। और कल की मुरली का मेन सार क्या था? मेन मतलब मेन जो इसेंस जो हमारे लिए था ना, धारणा की बात कहो या टेंशन की बात कहो, तो बाबा ने क्या कहा था? कर्मातीत अवस्था ना? हमें हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का? कर्मातीत अवस्था को पाना है। कैसे पाएंगे? जो कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करते रहेंगे वो ही खुश रहेंगे, है ना? याद है ये लाइन? याद है कि भूल गए? और जितना जिएंगे उतना याद करेंगे, और जितना याद करेंगे उतना खुश रहेंगे, उतना वर्षा मिलेगा ना। और इस शरीर की भी संभाल करनी है ना, तंदुरुस्त रहना है। तंदुरुस्त कैसे रहेंगे? खान पान अगर हम एक रस रखेंगे, अपनी चलन को, अपने दिनचर्या को एक रस रखेंगे, तो क्या होगा? ये शरीर क्या करेगा? तंदुरुस्त रहेगा, साथ देगा। अंदर में कोई भूत नहीं रहेंगे। बहुत अच्छा। हां जी, बाप समान रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत। तो कल की हां जी, हाँ, खाने खान पान की संभाल करनी। चलिए, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा था कि कल की जो मुरली थी और आज की मुरली जो है, रोज की मुरली है ना, संडे की मुरली थी ना, विशेष तो विशेष युग का विशेष फल है ना। तो रोज की मुरली जो है हमें जो है, हमारे लिए क्या है? ताजा ताजा भोजन है ना, आत्मा का। मैं जैसे हमारे यहाँ लोग यात्रा भोजन लेते हैं ना, जाते टाइम तो हम जाते टाइम दिल वालों को मुरली देते हैं अगले दिन की ना, तो कहते भी यात्रा भोजन तो ले लिया आपने शरीर का, ये आत्मा का यात्रा भोजन है ना। घर तक जब तक पहुंचो ट्रेन में तो आत्मा का यात्रा भोजन लेके जाओ, है ना। और सभी दिल वाले अपनी जेब में तीन चीज रखते हैं, कौन क्या चीज रखते हैं इनको पता, सभी को पता होगा, पता होगा सभी सभी को। जो हार्ट पेशेंट्स आते हैं ना, जो हार्ट के प्रोग्राम में जो हार्ट के पेशेंट्स आते हैं तो उनको हम दिल वाले कहते हैं सभी को ना। तो दिल वाले जो होते हैं ना, तो दिल वालों को हम हमेशा हर दिल वाले की जेब में आपको ऐसे मिलेगी। अगर दिल वाला, मैं कहता हूँ जो दिल वाला अपनी जेब में नहीं रखता है वो दिल वाला नहीं है ना। एक तो क्या रखते हैं वो, एक तो दिलाराम की जो मुरली है ना, संडे की मुरली होती है उनकी जेब में हमेशा। और एक जिस दिन की है ना, जिस दिन सपोज लास्ट संडे था ना, दो दिन पहले, तो संडे की मुरली, फिर आज की मुरली और चार्ट, और उसके आगे एक सफेद कागज ताकि दिखाई न रहे अंदर जेब में क्या है, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं दिल वाले की परिभाषा है ना। दिल वाले क्या क्या रखते हैं जेब में, सामने एक सफेद कागज, जैसे मैं अपने जेब में दिखाता हूँ, देखो देखो सामने एक सफेद कागज जिसे सामने दिखाई ना दे, क्या है ये, चार्ट, डेली का चार्ट, ये वाली मुरली संडे की और ये आज की मुरली है ना, ठीक है। तो ये चीज जेब में रखते हैं हमेशा, बार 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 चिंतन करने के लिए हमें खजाना हमारी जेब में रहता है। सोते समय भी मुरली कहाँ रखनी होती है, सिरहाने रख के सोना चाहिए ना, तके के नीचे है ना, ताकि कभी आधी रात में उठे और साथ में एक टॉर्च रख के सोना चाहिए। लाइट भी ना हो तो क्या करो, रात में अचानक आंख खुले तो टॉर्च से क्या देख लो, मुरली का पॉइंट, अगर और कुछ याद नहीं आए तो मुरली का पॉइंट देख लो, ठीक है। क्योंकि कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती, कभी भी भूकंप आ सकता है, विनाश हो सकता है। तो टॉर्च आपके पास हो तो कम से कम, अगर बिजली चली भी जाए तो आप टॉर्च से अपनी मोबाइल तक के सुना ना, बीमारी पैदा करना ना, टॉर्च से बीमारी पैदा नहीं होती, मोबाइल से तो आपका हार्ट खराब होगा, दिमाग खराब हो जाएगा ना, कैंसर हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा ना। कम से कम सोने के पहले 10 फुट दूर रखना चाहिए मोबाइल को, तो ना अपने सोने के, अपने बेड से 10 फुट दूर मोबाइल होना चाहिए ना। तो मैं आज ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि सूक्ष्म शरीर है ना, ये तो हमारा स्थूल शरीर है ना, एक सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म वतन क्या है, राइट, इनका रहस्य क्या है। जैसे अगर कल की मुरली को हम देखें, हमें कर्मातीत बनना है, तो कर्मातीत कैसे बनेंगे, कर्मातीत का अर्थ क्या है, कर्मातीत का मतलब है कि कर्म करते हुए कर्म के बंधन से अतीत हो जाए, हमें कोई कर्मों का बंधन ना रहे। अभी देखो हम किसी को अच्छा कर्म करते हैं ना, वो भी बंधन बन जाता है। अच्छा माना किसी की मदद करो ना, वो व्यक्ति जब आपको मिलेगा, जब आपको आपको मतलब उसको आपसे लगाव हो जाएगा, झुकाव हो जाएगा, आपके प्रभाव में आ जाएगा, तो भी मुसीबत है ना। और अगर बुरा करो तो बंधन वैसे वैसे टकराव में आ जाएगा, है ना। तो लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव, ब्राह्मणों की सबसे बड़ी अपवित्रता यही है ना। अभी हमारे ने स्थूल पर अपवित्रता नहीं है, काम विकार की अपवित्रता नहीं रही है, लगभग सभी इस बात को धारण कर लिया होगा सभी ने, तो वो अपवित्रता नहीं, किंतु लगाव, कोई व्यक्ति अच्छा लगने लगता है ना। अलौकिक में ही समझो, लौकिक में नहीं, ये बहुत अच्छी क्लास कराते हैं भाई साहब, ये बहन दीदी बहुत अच्छी क्लास कराती हैं, बहुत अच्छी दृष्टि देती हैं, बहुत अच्छा योग कराती हैं, ये दादी बहुत अच्छा, ऐसे इनसे बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, ये भाई साहब से ऐसे बहुत अच्छा होता है ना, झुकाव है ना, उसकी बात सुनने को दिल करता है, उसके बारे में जानने को दिल करता है, प्रभाव, किसी के प्रभाव में आ जाते हैं बड़ों के, है ना, और टकराव। तो ब्राह्मणों की सबसे बड़ी अपवित्रता यही है, ठीक है। तो अगर हमें सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे तो कर्मातीत बनेंगे, है ना, बिना सूक्ष्म वतनवासी बने, और जब सूक्ष्म वतनवासी कब बन सकते हैं, जब सूक्ष्म, हमारा शरीर सूक्ष्म बनेगा तो है ना। हम मनुष्य आत्माओं के पास दो शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है एक स्थूल शरीर है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास सिर्फ सूक्ष्म शरीर है, और शिव बाबा के पास ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर। ठीक है, बाबा कहता है मेरे पास ना सूक्ष्म है ना स्थूल है। तो शिव बाबा तो शिव बाबा की, और हमारा सूक्ष्म स्थूल शरीर तो हमारा पांच तत्वों का बना हुआ है, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर किस चीज से बना हुआ है? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म ये तीन जो सूक्ष्म शक्तियां ना आत्मा की, मन बुद्धि संस्कार, इससे हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम चलेंगे सूक्ष्म शरीर कैसे बना है हमारा, है ना, सूक्ष्म शरीर क्या है हमारा, क्योंकि ये मन बुद्धि संस्कार ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, राइट। और ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म शरीर है, मतलब सूक्ष्म शरीर ये जो मन बुद्धि संस्कार का ही बना हुआ है, और शिव बाबा के पास ना, इसका मतलब शिव बाबा के पास मन बुद्धि संस्कार नहीं है, मन है शिव बाबा के पास, शिव बाबा को संकल्प चलता है, जैसे हमको भी संकल्प चलते हैं, शिव बाबा को भी संकल्प चलते रहते हैं, अरे ये बच्चा क्या कर रहा है, इसको क्या हो, ये देखो एक्सीडेंट होने वाला है, इसका देखो मर जाएगा अभी ना, ऐसे संकल्प चलते हैं, संकल्प टच करता है, ड्रामा में जो ना था सिर्फ वो टच करता है उसमें। तो शिव बाबा के पास, एक्चुअली शिव बाबा के पास, शिव बाबा सिर्फ क्या है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य बीज रूप है, और शिव बाबा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तियों का सागर है। और बाबा जो है रहमदिला विश्व कल्याणकारी है, तो बाबा का ये बाबा का दिल है, ये बाबा की कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस है, बस बाबा में यही भरा हुआ है। बाबा जैसे बिंदु है ना, जैसे हम वो सुप्रीम बिंदु है, हम आत्मा है, वो परम आत्मा है, सुप्रीम आत्मा है, हमारे पास छोटा सा दिल है हमारा, छोटा सा, थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ी सी पवित्रता है, थोड़ी सी शांति है, थोड़ी सी प्रेम, थोड़ा सुख, अभी थोड़े दिन पहले था ही नहीं, अभी थोड़ा 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 आने लगा, थोड़ा थोड़ा टपक टपक के थोड़ा 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 आने लगा, थोड़ा थोड़ा टपकने लगा अंदर ना, थोड़ा ज्ञान आया है, थोड़ा सा समझ आई है, ज्ञान माने समझ, थोड़ी समझ आई है, मैं समझा हूं नहीं, मैं ये नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, है ना, मैं तो आत्मा हूं, ये डॉक्टर तो लेबल है जो समाज ने मुझको दिया है, वो डॉक्टर सारे समय से मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूं, थोड़ी देर के लिए अस्पताल में डॉक्टर हूं, घर में डॉक्टर थोड़ी ना हूं, तो मैं तो थोड़े समय के लिए डॉक्टर हूं, और डॉक्टर भी क्या है, रोल है ना, तो थोड़ा सा रोल है, लेबल लगा हुआ है ना, कोई भी मुझे काम मिला है वो लेबल है ना, माँ हूं, बाप हूं, पति हूं, पत्नी हूं, लेबल है ना, बिजनेसमैन हूं, ये लेबल है ना, ये तो मैं नहीं हूं, लेबल कोई आदमी होता है क्या, है ना, तो मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये थोड़ी समझ मिली है, ये मेरा बाप नहीं है, ये स्थूल में जो मेरा बाप है, मेरी माँ, ये नहीं, वो मेरा बाप है, मैं जो आत्मा हूं उसका बाप वो है, उसका माँ बाप वो है, ये थोड़ी समझ मिली अभी आके मिली ना, इतनी मिली है वैसे, उससे मेरे सरल संबंध है थोड़े, ये भी पता लग गया, ड्रामा जो समझ नहीं आता था, ये मेरे को क्यों दुख दे रहा है, ये मेरे को क्यों दुख देती है, क्यों मेरे को गाली देते हैं, ये मेरे को धोखा क्यों देते हैं, बार बार धोखा देके आंख भी दिखाते हैं, रोज गाली देते हैं, पानी पी पी के गाली देते हैं, तो भी इनका पेट नहीं भरता है ना, है ना, तो इनको फील भी नहीं होता कि हम गाली देते हैं, इनको महसूस भी नहीं होता है, हम सोचते कभी तो महसूस होगा, कभी महसूस भी नहीं होता है, हक समझते हैं अपना गाली देना, तो उनको मतलब उनको शायद शांति पड़ती है गाली देने से, तो समझ नहीं आता था क्यों गाली दे रहे हैं, तो ये थोड़ा पता लगा गाली क्यों दे रहे हैं, है ना, धोखा क्यों दे रहे हैं, तंग क्यों कर रहे हैं, मैंने किसको दुख नहीं दिया सारे जीवन में, मैं समझता हूं किसको मैंने दुख नहीं दिया, पर मुझे बीमारी क्यों आई, है ना, मेरे को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, समझ नहीं आता था क्यों बीमारी आ रही है, अब समझ में आ गई थोड़ी, तो बाबा ने समझा दिया, ड्रामा ज्ञान समझा दिया, तो समझ थोड़ी आई है ना, तो उसके आधार पर थोड़ी पवित्रता आई, शांति, प्रेम, सुख थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा ज्यादा नहीं आया, थोड़ा सा, जैसे पानी बरसात हुई ना, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पानी भर गया, थोड़ा सा कुआं था, कुआं क्या था, थोड़ा सा गड्ढा था एक, उसमें पानी थोड़ा सा भर गया है ना, और शिव बाबा तो सागर है ना, ज्ञान का सागर, तो मेरा दिल इतना सा छोटा सा, बाबा का दिल कितना बड़ा होगा, मैं तो इतना थोड़ा बूंद 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 है, जैसे आज के हम तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा ने एक ज्ञान की बूंद हमको दी है, तो हम अपने आप को समझते थोड़ा सा ज्ञान हमें आ गया, हम ज्ञानी बन गए हैं ना, वो तो सागर है ना? तो ज्ञान का सागर है वो, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर, प्रेम सुख आनंद शक्तियों का सागर है। तो वो सागर कितना बड़ा होगा सोचो, सागर सागर में कितना पानी होता है, 10 लीटर 20 लीटर कितने लीटर होता है, अच्छा होता है ना। तो हम तो छोटे टुबके हैं जैसे ना, तो बाबा तो सागर है। तो हमारी दिल इतनी छोटी, दिल किसे कहते हैं, दिल माना कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस। तो हमारी कॉन्शियसनेस में क्या आया, थोड़ा सा पहले बॉडी कॉन्शियसनेस भरा हुआ था, पहले क्या भरा हुआ था, बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं देह हूं, देह तो मैं दिल में, मेरे दिल में यही बैठा था, मैं देह हूं, देह में जरा कुछ हो गया उसके बारे सोच रहे हैं, कुछ मेरी आर्टरी थोड़ी सी बंद हो गई तो आर्टरी मेरी ब्लॉक हो गई, मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, ये हो गया, ड्राइवर गाड़ी में खराबी आई है, ड्राइवर कहता मैं बीमार हो गया हूं। आप सोचो एक गाड़ी का ड्राइवर है, उसकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई, कार्बोरेटर में प्रॉब्लम आ गई, तो ड्राइवर कहने लगा मैं ही बीमार हो गया। अरे भाई कार्बोरेटर में खराबी है, तेरे अंदर खराबी आई है। तो हमें इतनी समझ में नहीं थी, इतने बेसमझ बन गए थे। कार को डेंट लग गया, कहता मेरे को डेंट लग गया है ना, ड्राइवर ऐसे बोलेगा मेरे को डेंट लग गया है ना। एक्सीडेंट कार का हुआ, कहता मेरे को मेरा एक्सीडेंट हो गया। अरे भाई तुम्हारा एक्सीडेंट थोड़ी ना, कार का एक्सीडेंट हुआ ना, नहीं तो मतलब इतना मतलब बेसमझ हम बन गए थे। तो बाबा ने कहा थोड़ी समझ दी, दी तो बहुत सारी पर हमको समझ थोड़ी सी आई, नहीं ज्यादा समझ नहीं आई। अभी भी थोड़ी देर में फिर कहते मैं आत्मा हूं, फिर कहते अच्छा मैं माँ हूं, थोड़ी देर में भूल जाते हैं माँ, फिर बच्चे की तबीयत देखे फिर रोना शुरू कर देते हैं, नहीं ऐसा। थोड़ा धंधे में ऊपर नीचे हुआ, अभी कहा मैं आत्मा हूं, धंधे में ऊपर नीचे हुआ, अरे मेरा तो इतना घाटा हो गया। अरे तुम्हारा क्या घाटा हो गया, तुम्हारा कुछ घाटा नहीं हुआ, नहीं मैं थोड़ी देर में इतना, इसलिए समझ थोड़ी सी ज्यादा सारी है, थोड़ी सी है ना, ज्यादा सारी होती तो क्या होता, शिव बाबा के ऊपर बैठ कितना समझ का सागर है ना, वो ज्ञान का सागर है ना, कितने लोग मर जाते हैं, लोग टक 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 करके 100 लोगों को मार देते हैं, तो उसको उसका आंसू आने लग जाते हैं क्या शिव बाबा, या शिव बाबा कोई टेंशन हो जाती है क्या, इतने सारे लोगों को मार दिया बिना बात पे, है ना, ऐसे बोलता है क्या बाबा, कुछ भी नहीं, ठीक है मार दिया तो अच्छा कोई बात नहीं, रामानुजन आत्मा तो जिंदा है, ठीक है शरीर गए कोई हर्जा नहीं, ऐसा अच्छा आत्मा मुक्त हो गई, बंधन में थी मुक्त हो गई। तो मैं शिव बाबा को मतलब वो समझ का सागर, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ सागर में, हम में हमारा इतना सा ज्ञान हमारे अंदर है, हम कहते हैं तो भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं कि, तो जहां हमारे ऊपर प्रॉब्लम आने लगती है तो हम क्या होता है, ज्ञान उड़ जाता है नहीं ना, जैसे तत्ते तवे पर ना बूंद पानी डालो एकदम उड़ जाती है, नहीं ऐसा होता। तो समझ में सागर में और हम में क्या फर्क है, थोड़ी टेंशन हुई थोड़ा धंधा में ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, कहते वो कहते मेरी टांग में दर्द हो रहा है, अरे दर्द नहीं बाबा को याद करो ना बाबा, अरे तुम्हें क्या पता बाबा को क्या याद करूं, मेरे तो जिसका दर्द होता है उसको पता लगता है। अगर सागर होता है ज्ञान का, मास्टर सागर बन गया होता तो समझ होती ना कि देखो ये दे मैं अलग हूं ये अलग है। टायर पंचर हुआ ना, टायर पंचर हुआ तो टायर पंचर है तो टायर लगवा लो, पंचर लगवा लो भाई, तुम रोते क्यों, ये तो रोना शुरू कर दो, टायर पंचर हुआ रोना शुरू कर दिया, अरे दर्द हो रहा है दर्द, ठीक पंचर लगवा लो, ठीक करा लो भाई, नहीं रिप्लेसमेंट करा लो टायर, अच्छा ज्यादा ही फट गया तो पूरा ही रिप्लेसमेंट करा, नया टायर लगवा लो, नहीं रिपेयर के लायक है तो रिपेयर करा लो, ऐसे तो करते हैं हम जीवन में, नहीं करते। तो मतलब इतना ज्ञान हमारे पास है ना, चलो अभी हम इस पर थोड़ा सा और गहराई से, मतलब तो बाबा सागर है, तो उसका दिल कितना बड़ा है, सागर ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है वो, शांति का सागर है, प्रेम का रूहानी प्रेम का सागर है, अतिंद्रिय सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर, इसलिए उसके परखने की शक्ति कितनी गहरी है, उसके पर कितना परखने की शक्ति का सागर है, निर्णय करने की शक्ति का सागर है, एक सेकंड में निर्णय होता है उसका, कभी वो देर नहीं लगती उसको निर्णय करने में कुछ भी ना, बड़ी से बड़ी बात हो जाए छोटा करने की शक्ति का सागर है, पहाड़ जैसी पहाड़ को राई बनाने का सागर है, समेटने की शक्ति का, समेट के रहता है हमेशा वो, तो है ना, वो ज्यादा फैलाता ही नहीं किसी बात को, है ना। सहन करने की शक्ति का सागर है, समाने की शक्ति का सागर है, सामना करने की शक्ति का सागर है, सहयोग करने की शक्ति का सागर। बाबा आता है पीछे, कोई शरीर या कोई भाई या बहन शरीर छोड़ देता है, कोई हमारे सीनियर भी शरीर छोड़ देते हैं, बाबा आके क्या करता है, आराम से मुरली सुनाता है, बच्चों की महिमा करता है, फिर मुरली सुना के कहता है अच्छा ये हुआ, कोई ड्रामा में ऐसा ही था, उनका पाठ पूरा हो गया था, बस बात पूरी हो गई, उनका पाठ पूरा हो गया, अभी एडवांस पार्टी में उनका आगे काम था, उनकी आगे ड्यूटी थी, आगे अगली ड्यूटी पे गए, पूरा हो गया पाठ, हम रो रो के हैरान हो गए, और बाबा ने उसको क्या किया, विस्तार को सार में लाके समेट दिया, एक सेकंड में समेट दिया। नहीं तो बाबा कैसे, मतलब कितना बड़ा सागर, कितना सागर, तो उसका दिल कितना बड़ा है तो, और हमारा दिल छोटा सा है ना। तो दिल किसे कहते हैं, जो सात गुण है ना आत्मा के, ये इससे जो जो बनता है ना, जो आत्मा यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहां से नीचे, तो ये जो है वो वहां वो सेल्फ सेंस करती है, ज्ञान को सेंस करती है, पवित्रता को, शांति को, प्रेम को, सुख को, आनंद को, शक्तियों को सेंस करती है, और वो फिर विचारों में बदल जाती है, फिर वैसे विचार पैदा होते हैं, ये आत्मिक ऊर्जा, और उससे फिर मानसिक ऊर्जा पैदा होती है, मतलब विचार पैदा होते हैं, वैसी भावनाएं पैदा होती हैं, वैसे वृत्ति पैदा, वैसे एटीट्यूड, जैसे वो आएगा ना, फिर जैसे मेरे अंदर मैं समझ में आया मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, अब मेरा क्या वृत्ति कैसी बन गई आपके प्रति, मैं भी आत्मा, तो आत्मा समझ के देखूंगा, फिर वैसी फाइलें हैं मेरे, एक हार्ड कॉपी ब्रेन में, सॉफ्ट कॉपी आत्मा में, तो वो फिर वो वाली फाइल खुल जाएगी। कौन सी वाली फाइलें, मैं जब ब्राह्मण था पिछले कल्प में, संपूर्ण ब्राह्मण, ये तो मेरा ब्राह्मण स्वरूप कैसा है, ये तो पुरुषार्थी स्वरूप है, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की फाइलें खुल जाएंगी। पिछले जन्म में 5000 साल पहले जो फरिश्ता में बना था उसकी फाइलें खुल जाएंगी, और देवता था मैं सत्ययुग के आदि में, वो फाइल खुल जाएगी, राइट। तो इस तरह से हमारा सिस्टम बना हुआ है। तो अभी जो जैसे तो बाबा है सात गुणों का सागर, उसका उसका संकल्प भी यही है, यही संकल्प है, उसके संकल्प कुछ और नहीं, हमारे तो संकल्प दो तरह के संकल्प होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के होते हैं, है ना। उसको एक ही संकल्प, यही संकल्प, ज्ञान के संकल्प में, पवित्रता के संकल्प, शांति के संकल्प, प्रेम संकल्प भी उठाता नहीं है, ड्रामा में जो होना होता है उसको टच होता है, वो बोल देते हैं बाबा जी देखो ठीक बैठे, इनकी तबीयत ठीक है, आपके साथ हो ठीक बैठे, तबीयत ठीक है ना, देखो मेरे को ऐसे कोई करके बैठता है, मुझे लगता है कोई पता नहीं तबीयत खराब है कुछ हो, तो वो तो नहीं है, सीधे होकर ऐसे गर्दन नहीं करके बैठना, मेरे को फिर मुझे बोलना पड़ जाएगा ना, ठीक है हाँ जी, क्यों मुझे चिंता होने लगती है फिर थोड़ी थोड़ी, तो तबीयत खराब तो नहीं है। सुना आपने, तो बाबा जो है ऐसे सात गुणों का सागर है, और जो हम हैं वो सात गुणों के स्वरूप हैं, राइट, थोड़े थोड़े हैं, और जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, ब्रह्मा एक्चुअली क्या है, ब्रह्मा संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बुद्धि है, ठीक है, कान बुद्धि, और शंकर क्या है, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान मन है, ठीक है, अशरीर स्थिति, और विष्णु है संपूर्ण पावन सत्व प्रधान संस्कार है, ठीक है, कोई सूक्ष्म स्थूल में ऐसे बने नहीं हुए कि ब्रह्मा जी बैठे हैं, ये भी विष्णु जी बीच में खड़े हैं, शंकर जी ऊपर बैठे हैं, ऐसे तीन जो ब्रह्मा दिखाते हैं, तीन विष्णु शंकर पुरिया दिखाते हैं, ये बेसिकली मन बुद्धि संस्कार के तीन रूप है, ठीक है, तो ब्रह्मा ही का ही स्वरूप है। जब ब्रह्मा शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आए तब उन्होंने क्या दिया, सबसे पहले बाबा को बुद्धि दी, कौन सी वाली, दिव्य बुद्धि दी, राइट, ये बुद्धि के बुद्धि में क्या डाला बाबा के, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, है ना, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, है ना, तो बाबा की बुद्धि में सातों बातें डाल दी, मतलब ये ज्ञान डाल दिया बाबा की बुद्धि में, तो बाबा की बुद्धि कैसे बन गई, दिव्य बुद्धि बन गई, और फिर बाबा ने क्या किया, और मन में क्या रख दिया बाबा के, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मन में क्या रख दिया, मन में लक्ष्य रख दिया, विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश दिखा दिया। हमारे मन में क्या रहती है, सभी के मन में क्या रहता है, ये दुनिया रहती है, स्थूल दुनिया, उसमें हमारे बाल बच्चे, हमारे जो संबंधी रिश्तेदार, ये दुनिया, हमारा बिजनेस धंधा जो भी रहता है वही रहता ना। तो बाबा, शिव बाबा ने क्या किया, उसको दिखा दिया कि कुछ भी जो तुम्हारा है ना, सब खत्म, रहने वाला नहीं है, सब खत्म हो रहा है, सब विनाश को पा रहा है, खत्म होने वाला नहीं, विनाश हो रहा है, ये दिखा दिया, सब कुछ, सब मर रहे हैं, सब खत्म हो रहे हैं, सब खत्म हो गए। तो मन में जो था, जो मन में जो रहता था वो खत्म कर दिया, और क्या डाल दिया, फिर स्वर्ग का सीन दिखा दिया कि स्वर्ग आने वाला है ऐसा ऐसा, और तुमको बनाना है। बाबा ने कहा मैं कैसे बनाऊंगा, उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे द्वारा बनवाऊंगा, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे द्वारा बनवाऊंगा। तो मन में लक्ष्य रख दिया, राइट, तो मन में ये लक्ष्य दे, तुम्हें ये बनना है, और ये बता दिया तुम्हें अभी श्री कृष्ण बनना है, तुम्हें नारायण श्री नारायण बनना है, तुम्हें विष्णु का रूप धारण करना है, तत्वम, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, चतुर्भुज का साक्षात्कार, तत्वम, तुम्हें ये बनना है। तो बाबा को पहले दिन ही क्या हो गया, उनका बुद्धि में ये आ गया और मन में क्या आ गया, लक्ष्य आ गया, सतयुग आ गया, स्वर्ग आ गया। तो बाबा को सबसे पहले, सब जिसने भी देखा, शुरू से देखा, 1936 से जिसने भी बाबा को देखा, वो किस रूप में देखा, फरिश्ते के रूप में देखा। किसी ने कभी बाबा को सिंपल देहधारी के रूप में नहीं देखा, सिंपल मनुष्य के रूप में नहीं देखा। निंदामन बताओ, किसी ने देखा, कभी दादिया सुनाते हैं कि हमने बाबा को एक सिंपल देहधारी के रूप में देखा, बाबा को हमेशा ही फरिश्ते के रूप में देखा, कृष्ण का साक्षात्कार उनके द्वारा होना, उनके द्वारा मतलब सब लोग सूक्ष्मतन में चले जाना, है ना, सूक्ष्मतन का राज बता रहा हूं ना, सूक्ष्मतन में चले जाना, क्या क्या था सूक्ष्मतन, क्या है सूक्ष्मतन, क्या है सूक्ष्म शरीर, बाबा के सामने कोई आता था, बाबा का स्थूल शरीर उनको दिखाई नहीं देता था। बाबा को कोई मारने भी आए, है ना, जैसे सरदार जी आए थे ना बाबा को मारने, उसकी घरवाली और उसके बच्ची ज्ञान में चल पड़ी, तो सरदार जी ने सोचा इन्होंने मेरा घर बिगाड़ दिया है, तो सरदार जी कृपाण लेके ना छुपा के ऐसे अंदर ना ऊपर से चद्दर ओढ़ के ना फिर आए और कृपाण लेके आए, दूर से आ रहे थे, बाबा तो यहाँ थे, बाबा से खड़े थे, तो बाबा को पास हुआ, जैसे दूर से तो देखते हुए आ रहे थे, उनके मन में था मैं मार दूंगा, जाके कृपाण से मार दूंगा, जैसे नजदीक आए तो उनको क्या दिखाई दिया, नानक देव दिखाई दिए, तो नानक देव दिखाई दे, बाबा खड़े थे, बाबा और दिखाई दे ना, उसकी बहुत श्रद्धा थी नानक देव में, तो उसने कहा मैं क्या करने चला था, नानक देव को मारने चला था, जाके वाहेगुरु 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 करके पैरों में पड़ गया, ऐसे कोई और एक आए थे मारने के लिए, तो वो भी बाबा को सामने देखा, तो बाबा को मारने इसलिए आते थे, सोचते हमारा घर बिगड़ गया, हमारा पवित्र, हमारी जो पत्नी है ना, हमारे घर वाले सारे पवित्र बन गए, हमारी सुनते ही नहीं है, इसलिए मतलब उनको समझते थे ये बाबा के कारण ऐसा हुआ। तो बाबा को लाइट बाबा की लाइट की बॉडी देखी, लाइट बाबा दिखाई नहीं दे, उनका सूक्ष्म शरीर दिखाई दिया, जैसे बाबा है ही नहीं, कोई फिजिकल बॉडी वाला व्यक्ति नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर दिखाई दिया, और दिखाई दिया किसको मारे, तो ऐसे में तो बाबा से सूक्ष्म शरीर के साक्षात्कार होते थे ना बाबा के। तो बाबा का क्या था, कैसे बाबा ने अपने सूक्ष्म शरीर को बनाया, तो सूक्ष्म शरीर माना पवित्र बुद्धि और पवित्र मन, राइट, पवित्र बुद्धि और पवित्र मन, और फरिश्ता माना पवित्र बुद्धि पवित्र मन पवित्र संस्कार। सूक्ष्म शरीर में, अगर मुझे सूक्ष्म वतन में जाना, सूक्ष्म वतन क्या चीज है, सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म वतन जो है वो है जब शिव बाबा आते हैं संगम के शुरू में, जैसे ब्रह्मा बाबा में जैसे आए, तो शिव बाबा पहले दो ही वतन होते हैं, सारे कल्प में सर दो ही वतन रहते हैं, एक तो साकार वतन, पांच तत्वों का बना हुआ वतन, दुनिया, और एक मूल वतन या आत्माओं की दुनिया, ब्रह्म तत्व, ये पांच तत्व वो ब्रह्म तत्व, उसमें जो है सब आत्माएं रहती है, वहां शिव बाबा भी रहते हैं, तो ये दो ही दुनिया रहती है। तो जब शिव बाबा संगम पर आते हैं, संगम जब शुरुआत तभी से होती है ना, तो जब शिव बाबा आते हैं तो सूक्ष्म वतन की स्थापना करते हैं। पहले सूक्ष्म वतन की स्थापना करते हैं और फिर बाबा के द्वारा ये साक्षात्कार का पाठ शुरू होता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार, वो भी ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार का पाठ शुरू हुआ कि ब्रह्मा बाबा को जैसे लग रहा है कि वो कौन सी दुनिया में चले गए, वो बाबा के जैसे बाबा शिव बाबा उनके शरीर में पधार गए, उनको लाल लाल लाइट सारे जैसे कमरे में ऐसे ऐसे प्रकाश हो गया, वो फिर ऐसे ऐसे फील हुआ। और फिर बाबा ने वो जो निज स्वरूपम शिवहम शिवहम ज्ञान स्वरूपम शिव, वो जो बाबा ने उच्चारण की ना शिव बाबा ने, और फिर बाबा को सारा मतलब से वो हुआ, जो साक्षात्कार हुए वो कहाँ हुए, वो सूक्ष्म वतन में हुए। सूक्ष्म वतन क्या होता है, सूक्ष्म वतन क्या है कि सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है। शिव बाबा के पास क्या चीज है बताओ, मन तो शिव बाबा का यही है, बुद्धि में भी बाबा के यही है, संस्कार भी बाबा के यही है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानुशक्तियों के, तो बेसिकली बाबा तो बाबा का मन बुद्धि संस्कार कुछ है नहीं, बाबा का तो सारा यही है, यही बस कॉन्शियसनेस ही है, कॉन्शियस ही है, राइट। और शिव बाबा क्या करता है, ब्रह्मा के द्वारा मतलब शिव बाबा बुद्धि का, शिव बाबा का जो संपूर्ण बुद्धि का स्वरूप कौन है, ब्रह्मा है, पांचत्व प्रधान बुद्धि का रूप, संपूर्ण पांचत्व मन का रूप कौन सा है, वो शंकर है, और संपूर्ण पांच गॉड कहते हैं जनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन, तो वो कैसे, वो ब्रह्मा के द्वारा कराता है कैसे, राइट, तीनों का, उस पर हम थोड़ा गहराई में जाएंगे अभी। तो शिव बाबा का बेसिकली जो दिल है ना, दिल तख्त जिसे कहते हैं, तो शिव बाबा का दिल तख्त ही सूक्ष्म वतन है, राइट। जैसे एक माँ के माँ बाप के दिल में क्या होता है, माँ बाप के दिल में बच्चा जब होता है, छोटा बच्चा 2 महीने का 3 महीने का 4 महीने का, तो बच्चे का स्वरूप कैसा होता है, सुंदर होता है, संपूर्ण होता है, सत्व प्रधान देवता क्या बोलते हैं महात्मा जैसा होता है, सत्व प्रधान स्वरूप होता है। अब बच्चा 35 साल का हो गया, अभी लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, दाढ़ी बढ़ा लेता है, कहना नहीं मानता है, माँ से भी लड़ता है, बाप से भी लड़ता है, क्योंकि माँ को क्या याद आता है उसका, वो लड़ते लड़ते भी इसको देख के क्या करती है, वो उसको वो 2 महीने वाला बच्चा ही याद आता है, ये तो वो है, कोई कहे ना ये मार के आया है किसको, पिटाई करके आया, कहता ना मेरा बच्चा तो उसको मार नहीं सकता, ये तो कीड़ी नहीं मार सकता है, वो कीड़ी कौन ये कीड़ी नहीं मार सकता है, कि वो जो उसके मन में रूप है वो छोटे वाला वो नहीं मार सकता है। तो माँ उसके माँ के दिल में संपूर्ण स्वरूप है उसका, राइट, कॉन्शियसनेस में संपूर्ण स्वरूप है, बाप के दिल में संपूर्ण स्वरूप है उसका। तो हमारा भी हरेक का संपूर्ण स्वरूप जो है ना, हमारा संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप, हमारा फरिश्ता स्वरूप, हमारा देवता स्वरूप कहां पर है, शिव बाबा के दिल में है, ठीक है। शिव बाबा पर माता पिता है ना, जैसे आपके दिल में अपने बच्चों का स्वरूप रहता नहीं रहता, तो आपके 4 बच्चे हैं, चारों का स्वरूप रहता नहीं रहता। माँ कभी कभी बोलती है ना, को बेटा कहता है मम्मी मैं तो ऐसा हो गया, मम्मी बेटी बोलती है मम्मी मैं तो बहुत खराब हो गई, मम्मी मैं तो बहुत ऐसे हो, ना ना बेटी तू 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 मेरे दिल में देखना तू कैसी है, तू मेरी आंखों से देखना तू कैसी है, तू मेरी दिल से देखना, नहीं ऐसा होता, ऐसा होता नहीं होता। तो माँ की दिल से देखो ना, तो माँ के हम इसलिए बाबा का जो बाबा के पास एक हमारी हर की रिकॉर्डिंग है संपूर्ण सत्व प्रधान स्वरूप की, ब्राह्मण स्वरूप की भी, फरिश्ता स्वरूप की भी, देवता स्वरूप की, राइट। तो ये बाबा का दिल है, बाबा का दिल तख्त है संपूर्ण, जो सूक्ष्म वतन है। इस पे मेरी मैं मुरली से भी आपको उदाहरण दूंगा कि बाबा ने कैसे कहां ये बताया हुआ है। और मेरी जैसे ना कभी कभी मेरी क्या होती है, मेरे को कोई बात समझ नहीं आती ना, तो सूक्ष्म वतन वासी मैंने सूक्ष्म वतन कारोबार एक मुरली पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, सूक्ष्म वतन की कारोबार, मां शुद्ध संकल्पों से कारोबार चलती है, वहां कौन जा सकता है जिसके सर्व संबंधों के सार वाली याद हो ना जिसकी, तो वही वहां तैर सकता है सूक्ष्म वतन, जिसके बाप से एक बाप से सर्व संबंधों के सार वाली याद, मतलब जिस जो बाबा से हर संबंध की अनुभूति जिसने गहराई से की हो और वो सबकी सब अनुभूतियां एक बाप से कर ली हो, कोई भी देहधारी से उसकी बुद्धि ना रही हो कि मैं ये दोस्ती का संबंध इसे निभा लूं, इससे मैं माँ का संबंध निभाऊं, इससे बाप का संबंध, बस माँ है, माँ तो मेरी बहुत प्यारी है, बाकी तो मैं बाकी संबंध बाप से अनुभव किया हूं, कोई एक संबंध दोस्त का भी या कोई साजन का भी, सजनी का भी, बच्चे का भी, नहीं ये बच्चा तो मेरा बहुत प्यारा है, बाकी तो बाबा मेरा सब कुछ है ना। तो एक भी संबंध के बच्चे की अनुभूति भी बाबा से की हो ना, तो ऐसी आत्मा सूक्ष्म वतनवासी बन के रह सकती है। इस दुनिया में रहते हुए बाबा ने कर कहा ना, इस शरीर में रहते हमको कर्मातीत अवस्था को पाना है, कि शरीर छोड़ने के बाद पाना है। जो शरीर छोड़ने के बाद पाएंगे, हाथ उठाओ। संडे की मुरली याद है? संडे की मुरली याद है? बाबा ने कहा था आपको 2500 साल रहना है सत्यु त्रेता में, तो यहां पर कितना समय होना चाहिए? संगमी के प्रलब कितनी होनी चाहिए? 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 5 महीना। तो बाबा ने कहा 25 वर्ष तो होना चाहिए। नहीं, 2500 साल वहां रहना चाहते हो तो 2500 वर्ष तो होना चाहिए। नहीं, नहीं होना चाहिए। नहीं तो संगमी की प्रलब क्या है? संगमी की प्रलब यही है कि सतो प्रधान स्थिति, सतो प्रधान स्थिति माना सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर, सातों गुणों से भरपूर स्थिति मतलब संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। ये स्थिति मेरी दुनिया में काम करते करते, मतलब मैं सूक्ष्म वतनवासी स्थिति मेरी, मतलब सूक्ष्म वतनवासी मैं यहां रह के 25 वर्ष रहूं कम से कम। सूक्ष्म वतन माना जिसकी बुद्धि और मन शुद्ध हो गया, राइट। बाबा ने अपना बुद्धि और मन पहले दिन से शुद्ध कर लिया, जैसे ही शिव बाबा ने क्या अवतरण हुआ, क्योंकि बाबा का पुरुषार्थ मैं आत्मा हूं ये तो बहुत सालों से चल रहा था। लच्छू दादी से देते बाबा की डायरी देखते थे ना, बाबा कैसे आत्मा बन करके अपने मन बुद्धि से बातें करते थे, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर ना, कैसे बाबा उनसे बात करते थे, कैसे अपनी परीक्षा जांच करते थे, डेली डायरी में लिखते थे तूने आज ऐसा क्यों किया, तू ऐसे नहीं, तुझे तेरे को मैंने कहा था तू ऐसे कर, अपने मन से बात करते थे, बुद्धि से बात करते थे, तू आज मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, है ना, ऐसे बाबा बात करते थे। दरबार बुलाते थे ना, मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों के दरबार बुलाते थे रोज। ये बाबा के पधारने से पहले की बातें हैं, हम रोज दरबार बुलाते हैं ऐसे अपनी। तो बाबा ने 33 साल लगाए अपने संस्कार परिवर्तन करने में, जो 33 साल मतलब जो 63 जन्म में जो बाबा ने जो भी कुछ विकर्म हुए होंगे उनको परिवर्तन करने में बाबा ने संस्कार, याद है 68 में बाबा ने ब्राह्मणी को भेजा, संदेशी के ऊपर भेजा, जाओ देख क्या ऊपर बाबा क्या कर रहा है, बाबा कैसा है। उसने बताया बाबा को आके बताया कि बाबा ऊपर वाला बाबा तो बहुत चमकदार है, यार आप तो इतने चमकदार नहीं हो, मतलब ऊपर संपूर्ण स्वरूप था ना बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, तो वो तो बहुत चमकदार है, आप तो इतने चमकदार नहीं हो। तब से बाबा ने क्या किया, तब से बाबा ने और ज्यादा टेंशन करनी शुरू कर दी, और ज्यादा बाबा ने मुरली में गीत बजवाना बंद कर दिया, है ना, बाबा ने एकदम सारा दिन और ज्यादा तपस्या, चुप रहने लगे बाबा, किसी से बात करनी बंद कर दी, है ना, इशारे से बात करनी शुरू कर दी। तो बाबा ने दिन रात तपस्या करनी शुरू कर दी। फिर 69 के शुरू में जब बाबा के साथ एक दो तीन जनवरी की बात है, तो बाबा ने फिर ब्राह्मणी को भेजा, संदेशी को भेजा, जाओ भी देख के आओ। तो बाबा ने कहा, वो बच्ची ने कहा कि बाबा ऊपर वाला जितना बाबा चमकदार है तो नीचे वाला बाबा भी उतना चमकदार है। मतलब बाबा ने अपना सूक्ष्म शरीर कैसे बनाया, कैसे अपने आप को उन्होंने पुरुषार्थ करके, अंतिम पुरुषार्थ करके अपने आप को सूक्ष्म वतनवासी बना दिया, राइट। तो हमारा सबका संपूर्ण, ऐसे ही हमारा सबका संपूर्ण स्वरूप तो अभी भी बाबा के दिल में है, मतलब सूक्ष्म वतन में है, दिल में माना सूक्ष्म वतन में है, राइट, सूक्ष्म वतन में है। और वो बाबा, हम सूक्ष्म वतन जाते ना बाबा को, बाबा दिखाता है बच्चे तुम्हारा तो ये स्वरूप है, तुम्हें इतना बड़ा काम दिया, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। कल बाबा ने कहा एक सेकंड भी वेस्ट करना क्या है, एक सेकंड भी वेस्ट करना, एक संकल्प भी व्यर्थ करना कितना मुश्किल, वरदान में था ना, कल का पॉइंट था ना, कितना आप लोग कितना वेस्ट कर लेते हो, एक एक बोल वेस्ट करते हो। तो बाबा बाबा के पास जाता हूं, बाबा कहता बच्चे तू टाइम क्यों वेस्ट किया तूने कल, इतनी बात में फालतू की बात में क्यों लगाया टाइम, तो काम तुमको कितना बड़ा काम दिया हुआ है, तू क्या करता है बीच में, ये तेरा संपूर्ण स्वरूप रखा है, तुझे ये बनना है और तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, फील होता है ना अपने आप, बाबा संपूर्ण स्वरूप दिखाता है तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हारी ड्यूटी है, और तुम क्या कर रहे हो? तो बाबा के दिल में हमारा संपूर्ण स्वरूप है ना, ऐसे तो सूक्ष्म, तो ये हमें टेंशन रहे ना कि बाबा की जो मुरली है ना, ये जो बाबा की मुरली है, जो हम रोज की मुरली है, यही हमारे सूक्ष्म, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में, मतलब हमारे मन बुद्धि में स्थूल शरीर आ गया है, स्थूलता आ गई है, ये देह हमारी बुद्धि में और मन में घुस गई है, नहीं घुस गई, तो है सूक्ष्म शरीर है, किंतु बुद्धि और मन सूक्ष्म है, किंतु उसमें क्या घुस गया है? ये स्थूल शरीर घुस गया है, ये स्थूल देह के संबंध घुस गए, ये स्थूल देह का स्वभाव घुस गया है। स्वभाव क्या है? देह का स्वभाव क्या होता है? देहवान का स्वभाव क्या है? ये पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो उसके अंदर घुस गए। और संस्कार क्या है? देहवान के संस्कार क्या है? 10 संस्कार मैंने बताए थे आप लोग, जब मैं आया था चंडीगढ़ तब मैंने बताए थे, है ना? आलस्य सबसे बड़ा संस्कार क्या है? देहवान का संस्कार आलस्य मतलब थोड़ा सा, देखो थोड़ा मौका लगे ना, बस वो सोचते हैं अरे रात को नींद नहीं आई, पीछे को बैठ जाते हैं, पीछे थोड़ा सा चांस मिलेगा, आगे बैठेंगे तो रोक भी उठा भी देगा, है ना? पीछे को बैठे थे आंख बंद करके, बीच में थोड़ा सा बीच में झटके भी ले लेंगे, रात को नींद अच्छी नहीं आई थी। तो आलस्य सबसे बड़ा नंबर वन संस्कार है। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस्य, सबसे नंबर वन दुश्मन आलस्य, जो हमें अपने लक्ष्य को अचीव करने नहीं देता है। तो आलस्य, अलबेलापन, केयरलेस। अरे अमृत वेला ना, बाबा सारा संगम ही अमृत वेला, बाबा ने मुरली में बताया था ना, कोई बात नहीं 4 बजे नहीं, इसे तो 5 बजे सही, 5 बजे कर लेते हैं, कोई अर्जा नहीं है। अलबेलापन, केयरलेस, है ना? दूसरे में दोष निकालना, अपने दोष दिखाई नहीं देते हैं, मैंने किया इसलिए किया, क्योंकि इसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, उसमें उसने ऐसा किया ना मेरे को ऐसा किया। हमारी बुद्धि कैसी है? जो मनुष्य की बुद्धि कैसी है? मनुष्य की बुद्धि क्या है? जैसे जैसे होता है ना, एक हंस होता है ना, हंस के सामने 99 कीड़े पड़े हों, बीच में एक मोती पड़ा हो, तो हंस को क्या दिखाई देगा? कीड़े दिखाई नहीं देते, उसको मोती दिखाई देता है। और बगला होता है ना, बगला, स्टॉर्क इंग्लिश में कहते हैं, और वो भी सफेद रंग का होता है, उसके सामने ना 99 मोती डाल दो और बीच में कीड़ा रख दो, छुपो के, थोड़ा छुपो साइड में मोतियों के आसपास ही रख के, तो उसको मोती नजर नहीं आते, उस कीड़े नजर आता है। ऐसे मनुष्य और ब्राह्मण में फर्क है। मनुष्य क्या है? मनुष्य में ना मन के वश में, मन का दास, तो मन के दास, मन पांचों कर्मेंद्रियों के वश में है, मन शरीर के वश में है, शरीर के वश में। तो मन को जो मनुष्य है, जो मन के वश में है, वो उसको क्या दिखाई देता है? सामने वाले में 100 गुण, 99 गुण होंगे, एक अवगुण होगा। जैसे आपके घर वाले होते हैं ना, घर में नहीं होते, आपके बच्चे होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, आपके पति होते हैं, पत्नी होती हैं, वो आपका कभी आपकी अच्छाई के अच्छाई नहीं दिखेंगे, अज्ञान में नहीं है तो, है ना? ज्ञान में है तो शायद नहीं बोलेंगे, ज्ञान वाले ही बोल देते हैं, है ना? तो देखो मैं सच्ची सच्ची बातें बता रहा हूँ, मैं ऐसी ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सच्ची सच्ची बातें बोलने की मेरे को ना थोड़ी बड़े कड़वी होती है, किंतु मैं बोल देता हूँ ना। तो क्या बोलेंगे वो एक अवगुण है ना आपका, एक अवगुण वो ही पकड़ लेंगे। मम्मी तुम तो देखो गुस्सा करती हो ना, मैं तो गुस्सा भी नहीं करता, मेरे को नहीं जाना तुम्हारे सेंटर में, है ना? माँ तुम गुस्सा सीख के आती हो ना, आंख दिखाती हो ना मेरे को, आंख दिखाना सिखाते हैं वहां पे, मेरे को नहीं जाना तुम्हारे साथ। अब आंख तो दिखाने के लिए होती है ना, तो अब उनको इतना भी सहन नहीं, इतना बाकी सब काम, खाना बनाया, सब कुछ किया, उसको प्यार से सब कुछ करके दिया, टाइम पे सब, वो नहीं कहा कि मम्मी तुमने मेरे कितना काम करके दिया, तुम इतना मेरा सब कुछ कर देती हो, मेरे कपड़े सब चीज तैयार रखती हो। अरे आंख दिखाई कि तू खाना कैसे खा रहा, बातें करते करते खा रहा है, तेरे को मना किया था खाना खाने, बातें मत कर खाना खाते समय, है ना? तो इसलिए आंख दिखाई, तो अभी तो मेरे को उस आंख को ही पकड़ लेता है, मतलब एक 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 कमजोरी भी दिखाई देगा तो पकड़ लेंगे, ये है बुगला दृष्टि, राइट? और मनुष्य की दृष्टि ऐसी है, और ब्राह्मणों की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? उसमें 99 अवगुण है, तो एक गुण है सिर्फ, तो वो मोती पकड़ लेते राइट। इसी से आप चेक कर लो कि मैं मनुष्य हूं कि ब्राह्मण हूं। किसी के भी अवगुण दिखाई देते हैं इसका मतलब मैं पूरा ब्राह्मण नहीं बना। मनुष्य माना मन के वश में। मन मनुष्य कौन है? जिसके मन में हदें हैं, जिसके मन में देह है, जिसकी बुद्धि में देह है, मन और बुद्धि में इसके देह है, देह देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ है। ये बताया मैंने, आलस अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, शक अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी और ईर्ष्या द्वेष। ये मतलब 10 बातें हैं जो मुख्य मुख्य, इनके 10-10, इनके आगे 10-10 फिर और आगे भी हैं, तो मतलब मुख्य मुख्य मैंने बताया आपको, ये आदतें हैं। रिपीट करना, अच्छा लिख लो। चलो, आलस्य पहली आदत, दूसरी अलबेलापन, तीसरा दूसरों में दोष निकालने की आदत, चौथा बदला लेने की भावना, पांचवा शक करना, छठा अनुमान लगाना, सातवां चिंता करना, आठवां डर भय, नौवां जल्दीबाजी प्रेशर महसूस करना, अरे अभी वहां जाना क्लास, अभी वो करना, अभी टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर। ये काम इस ढंग से होना चाहिए, इस ढंग से होगा ना तो ही ठीक होएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं ही ठीक कर सकता हूं, ये नहीं ठीक कर सकते, इनको अकल नहीं है, मेरे को ज्यादा अनुभव है ना। कंपैरिजन कंपटीशन करना मतलब उसी के अंदर आता है, जल्दीबाजी के अंदर ही। और फिर ईर्ष्या, ये 10 बातें, इनके भी 10-10 और भी हैं, तो अभी हम 10 पे ही रहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो है आप, तो ये 10 आदतें हैं। और देह के पदार्थ मतलब ये हदें हैं ना, मनुष्य देह हद है, संबंध हद में है ना, और स्वभाव संस्कार भी हद में है ना, और संस्कार भी हद में। ये हद क्या है? आज कोई काम पड़ जाए, टेंशन आ जाए ना, काम विकार क्रोध लोभ सब भाग जाते हैं, आलस सब भाग जाता है। कोई टेंशन आ जाए आपको, आज कोई टेंशन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, आज आपको भी जाना है, प्लेन पकड़ना है, अचानक कोई घर पे कुछ हो जाए, तो फिर रहता है आलस रहता है क्या? अलबेलापन रहता है क्या? सारे भाग जाते हैं, तुरंत भाग जाते हैं, ऊपर को जाते हैं, गए ना, दे जाते ना, दे के संबंध जाते ना, दे के स्वभाव संस्कार ना, दे के पदार्थ ऊपर जाते हैं। तो ये है मनुष्य। और ब्राह्मण माना, ब्राह्मण बेहद, ब्राह्मण बेहद की माँ, ब्रह्मा बेहद की माँ, सारे विश्व की माँ। और ब्राह्मण माना जिस बेहद, जिसका मन सदा बेहद में रहे, जिसकी बुद्धि सदा बेहद में रहे। बेहद क्या है? ABCD। आत्मा बेहद है, शिव बाबा बेहद है, सारे हमारे बाबा का संबंध बेहद है, सी फॉर कनेक्शन, संबंध, सब संबंध हमारे बाबा के साथ है। आप माँ को बोल के दिखाओ, माँ को पत्नी बोल सकते हो क्या? माँ को बहन बोल सकते हो क्या? शिव बाबा को तुम माँ भी बोलो, पत्नी भी बोलो, बहन भी बोलो, कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? है ना, तो पिताजी को अपने 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 पति को आप बोलो पिताजी बोल के दिखाओ, भाई बोल के, बेटा बोल के दिखाओ, है ना, बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो? गुरुजी बोल दो पिताजी, अपने पति को जरा, मास्टर जी बोल के दिखाओ, तो नहीं बोल सकते ना। कि तो शिव बाबा को तुम जो मर्जी बोल सकते हो, है ना, हर संबंध से अनुभव कर सकते, ठीक है। तो भेद हुआ ना, जितने भी संबंध है आपके एक जगह पे हैं, है ना, आपको एक जगह पे मिलेंगे, और शिव बाबा हर जगह मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा? शिव बाबा हर जगह अवेलेबल, एवरीवेयर अवेलेबल, आप बाथरूम में हो, कहीं पे भी हो, जहां को दूसरा भी नहीं जा सकता वहां पे आ जाएगा शिव बाबा, आप याद करो पहुंच जाएगा, नहीं 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 पहुंचेगा, या कहीं कहीं मैं नहीं आता यहां पे, हर जगह पहुंच जाएगा, नहीं। मैं आपको बता रहा हूं मतलब कैसे बेहद, इसलिए कह रहा हूं बेहद है ना, अनलिमिटेड है ना उसकी पावर, अनलिमिटेड है ना। तो मतलब आत्मा हद है, आत्मा बेहद है, शिव बाबा बेहद है, उससे हमारे संबंध बेहद है, और फिर ये हमारा जो ड्रामा है ये भी बेहद है ना। एक एक आत्मा का 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है, कितनी आत्माएं हैं, सबका 84 जन्म, और आपस में क्या कनेक्शंस हैं, आप इतना जबरदस्त ड्रामा है। कोई मेरा, कोई मेरे, अब जैसे कोई हमारी शादी होती है, आपकी भी शादी सभी की हुई होगी किसी ना किसी से, है ना। अब देखो पड़ोस में भी लड़कियां होती नहीं होती, पड़ोस में होती है, वो भी आपको पसंद करती है, आप भी उसको पसंद करते हो, पर शादी किससे होती है? 100 किलोमीटर दूर शादी होती है ना, बीच में कोई लड़की होती नहीं है, बीच में कोई लड़का होता नहीं है, नहीं, क्योंकि उससे हमारा हिसाब किताब होता है ना। किसी की हिम्मत नहीं, मैं आंख दिखा रहे, घर में आती है आंख दिखाते हैं नहीं, बच्चे कान पकड़ लेते हैं, मूछे पकड़ के खींच लेते हैं ना, है ना। तो ये हिसाब किताब है ना, वो कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार है। कर्मों का हिसाब किताब क्या है? कर्म के कर्मों के अनुसार नहीं है हमारा आपस में हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब है। किताब माना क्या है? हमने किसी 100 रुपए लिए या 1000 रुपए लिए, मान लो 100 साल पहले, तो हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे नीचे है ना अकाउंट डिपार्टमेंट, ने पूछा तो मैंने कभी 100 साल के बाद कितने पैसे हुए, वो ब्याज कितना हो गया? तो कहता पहले ब्याज बहुत ज्यादा था ना, मतलब अगर समझो आज से 1915 का हिसाब किताब देखें, ब्याज रेट देखें, तो वहां 25% का ब्याज था उस समय, बंधुआ मजदूरी होती थी, है ना, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत चक्रवर्ती ब्याज लगता था बहुत ज्यादा। अभी 30 साल से ब्याज कम हुआ है। तो कहते हैं बनाओ ना हिसाब किताब, मैं उस हिसाब से लगा के बताता हूँ। तो 2 दिन उसने लिए मेरे को लगाने में, कहता है जी कितने हुए? कहता 52,48,00,000 रुपया हो गया। 1000 रुपया लिया उधार नहीं दिया तो कितना हो गया? 52,48,00,000। अच्छा अब जो है, अब राजयोग से क्या विनाश होता है? ये ब्याज विनाश होता है, मूलधन देना ही पड़ता है, ठीक है। अच्छा राजयोग भी पूरा करो ना शिव बाबा के अनुसार, पूरा 100% करो तो 52,00,000 विनाश होता है। आधा करा राजयोग, आधा किया अमृत वेला, आधा अमृत वेला, आधा सोए आधा जागे, मुरली में 30 दिन में से 15 दिन क्लास में आए, 15 दिन घर में इंटरनेट पे मुरली सुन ली, तो कितना हुआ? 26 करोड़ देना पड़ेगा, ठीक है, सुना आपने। अच्छा आपने 75% किया, 21 दिन आए मुरली में सुनने, 22 दिन आए, 8 दिन नहीं आए, 8 दिन घर में कर लिया, तो क्या हुआ? कितना बाकी रह गया? 13 करोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। आप हिसाब लगाते जाना अपने आप, बाकी मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाता, है ना। तो पूरा 100% करोगे ना, रोज अमृत वेला पावरफुल करोगे, रोज मुरली अटेंशन से सुनोगे, है ना, सारा दिन अटेंशन रखोगे, अपने मुंह से कोई मन सा वाचा कर्मणा जो बाबा ने दिनचर्या बना के उस पर 100% चलोगे, सोने के पहले पूरा खाता अपना पोता मेरे पूरा बाबा को दोगे, सच्चाई से मुरली पूरी पढ़ के बाबा को याद करके सोओगे, तो हिसाब किताब ठीक होगा, ठीक है। और ये हिसाब किताब पहले मैं 1000 रुपए का बताया, अगर गाली दी हो किसी को 100 साल पहले तो क्या होगा? कितनी गाली खानी पड़ेंगी सोचो ना, ब्याज कितना हो गया? सुबह शाम गाली देते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, आप गाली खाते रहो, प्यार से खाते रहो, खाते रहो, है ना, रोटी खाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, है ना। किसको दुख दिया होगा तो कितना दुख देगा वो सामने वाला, देगा ना। आप सब आप देखते हो, आप रोज दुख पाते हो, मैं देखता हूँ, है ना, मैं मुझे अनुभव है, तो अनुभव होता है ना, है जी, क्या करें। तो वो देते थे थकते नहीं, हम लेते रहते थकते नहीं, है ना, क्योंकि शिव बाबा इस जन्म में हमारे साथ है, हर संबंध से हर जगह हमारे साथ है, वो सागर है, समाने की शक्ति का सागर है, सहन करने की शक्ति का सागर है। तो सबसे अच्छा मौका है, जिसको जो देना बड़े भले दो, जितना दुख देना है, जितना प्रॉब्लम लेनी है, जितनी गालियां देनी, आ जाओ आ जाओ, सब खुली दरबार है, आ जाओ। नहीं, पर ये तभी पॉसिबल जब आपका कनेक्शन बाबा से निरंतर रहे, एक एक संबंध की अनुभूति होए, ठीक, दिल में सदा बाबा को बिठा कर रखो। तो ये सूक्ष्म वतन जो बेसिकली क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, शिव बाबा की दिल तख्त है और ब्रह्मा बाबा वहां पे बैठा हुआ है। ब्रह्मा बाबा बेसिकली क्या है, संपूर्ण ब्रह्मा क्या है, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बुद्धि, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान मन और संपूर्ण पावन सत्व प्रधान संस्कार। और ये जो बाबा है, जो ब्रह्मा बाबा है, ये जो संपूर्ण ब्रह्मा बैठा हुआ है, ये इसका दिल क्या है, सच्ची और साफ है। ऐसे सच्चे दिल पर साहब राजी, तो साहब उसके अंदर ही बैठा हुआ है, उसके दिल में बैठा हुआ है, राइट। तो इस समय जो बाप, ये हो गया बाप दादा, ठीक है। तो शिव बाबा इस समय सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा है, जो बाबा 2 साल से कह रहे ना, बाबा के दिल में कौन? बच्चे। और बच्चों के दिल में कौन? बाबा। तो ये जो एक ही है अभी तक, जिसके दिल में, शिव बाबा के दिल में कौन है? ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा के दिल में सदा कौन है? शिव बाबा। तो ये है सूक्ष्म वतन, समझ में, ये सूक्ष्म वतन है। तो शिव बाबा, अब देखो, अगर आप सूक्ष्म वतन को इस ढंग से देखो कि सूक्ष्म वतन क्या है, बाबा का दिल, दिल माना, बाबा का दिल माना ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, देखते जाओ आप, मैं आपको बोलता जा रहा हूं, कौन है सूक्ष्म रतन? क्या है? ज्ञान का सागर पवित्रता, शिव बाबा का, शिव बाबा ज्ञान का सागर पवित्रता, शांति का सागर, प्रेम सुखानंद शक्तियों का सागर, उसमें बैठा है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा मतलब ये उसका संपूर्ण स्वरूप, मतलब संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बुद्धि, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान मन, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान संस्कार, और उसके दिल में कौन बैठा हुआ है? शिव बाबा। कौन है शिव बाबा? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर। तो क्या बन गया? सूक्ष्म वतन। तो ये सूक्ष्म वतन है, राइट? अब मुझे सूक्ष्म वतनवासी बनना है तो मैं क्या करूं? सूक्ष्म शरीर क्या होता है? मन बुद्धि संस्कार। और सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म शरीर की शेप क्या होती है? जैसे एक सूखी ब्रेड ले लो आप, सूखी ब्रेड होती है ना, ड्राई ब्रेड, एक प्लेट में दूध डाल दो, तो जो ब्रेड उसको उसमें प्लेट में रख दो, दूध कहां जाएगा? अभी ब्रेड के अंदर चला गया। अब ब्रेड के अंदर चला गया, अब दूध की शेप क्या है? जो ब्रेड की शेप है, राइट? तो सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर बेसिकली ऐसा ही है जैसा कि सूक्ष्म स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में हार्ट भी है, फेफड़े भी हैं, सब आर्टरीज भी हैं, नसें भी हैं, नर्व्स भी हैं, आंखें भी हैं, नाक भी है, कान भी, उसकी नर्व्स भी हैं, ब्रेन की सेल्स भी हैं, सब कुछ उसके अंदर, जैसे यूं का यूं है। जैसे दूध के अंदर क्या है? अब दूध कहां है? दूध उसकी नस नस में है, ब्रेड की नस नस में है ना, ऐसी सूक्ष्म वतन हमारी नस नस में, ठीक है? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर नस नस में, क्योंकि हमारा मन कहां है? जहां थोड़ा सा कुछ हो जाए क्या होगा? थोड़ा सा कुछ हो जाए उसी के विचार चलते नहीं चलते? कहीं थोड़ा सा कुछ हो जाए, पैर में फुंसी आ जाए छोटी सी, है ना, तो क्या होता? विचार चलते ना उसके? नहीं चलते। थोड़ी सी एक कुछ हो गया, आंख में कुछ हो गया, बस उसी को गाते रहेंगे, उसी के विचार, जो मिलेगा उसी को गाएंगे। और 10 दिन से ना फुंसी हो गई, ठीक ही नहीं होती, आप बताओ ना कुछ क्या करूं? अरे भाई किसको फुंसी हो गई, है ना? मतलब सारा टाइम उनका एक ही 90% विचार एक ही चलेगा। तो मतलब हमारे मन में यही, तो मन हमारा कुछ और नहीं है बेसिकली, बेसिकली मन ही सूक्ष्म शरीर है। बुद्धि तो यही है, संस्कार हमारे व्यवहार में जो हमने बार बार कर्म किए वो रिकॉर्ड हो गए और हमारे व्यवहार से दिखाई देते हैं, व्यवहार में दिखाई देंगे, हमारे बोलने से, चलने से, आंखों के इशारे से, कानों से, कर्मों से दिखाई देंगे, ठीक है? तो पर जो मन है ना, मन माना टीम, मन माना चार बातें, टीम, टी माना थॉट्स, संकल्प, ई माना इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड, एम फॉर मेमोरीज, मतलब संकल्प, भावना, वृत्ति और दृष्टि और स्मृति। अब कैसे इसमें क्या कनेक्शन क्या आपस में, चारों कनेक्शन क्या है? संकल्प और भावना में क्या फर्क है? इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। जो संकल्प आप बार बार करते हो, गहराई से करते हो, वो क्या बन जाता है? वो भावना बन जाता है। संकल्प एक बिंदु है, राइट? एक बिंदु, आपने 10 बिंदु लगा दो ऐसे, 10 बार वही संकल्प करो गहराई से, भावना बन गया। मैंने 10 बार किया, उसने भी 10 बार किया, ठीक है? अभी क्या हुआ दोनों के बीच में? ये दो देखो, ये एक एक आत्मा, ये एक आत्मा, ये 10 बार विचार मैंने किया, 10 बार इसने किया, क्या हो गया? अभी अब दोनों आत्माओं के बीच में क्या हो गया? वाइब्रेशन शुरू हुए, ठीक है? भावना, भावना से वाइब्रेशन पैदा होना शुरू हुए। मां बैठी है यहां पर, आप यहां पे मां हो, यहां बैठी हो, और आपका बेटा बैठा यूएसए में 20,000 किलोमीटर दूर, जो आप सोचती हो वो उसको पहुंच जाता है, वो जो सोचता है आपके पास पहुंच जाता है। यहां बैठे बैठे सोच लिया, उसको टच हो जाएगा, उसको, मम्मी मुझे ना ऐसे आपकी बहुत याद आ रही थी, हाँ बेटा मेरे को तो, मैं आपके बारे सोच रही थी ना तभी तो। ये भावना के वाइब्रेशन होंगे ना दो व्यक्ति के बीच में। जैसे हम लोगों के क्या ये है, ये फिजिकल है, फिजिकल फिजिकल संकल्प माँ और बेटे के बीच में, उस बच्चे की याद आ रही है, दो महीने का, 2 साल का, 4 साल का बीमार हुआ तब की उसकी याद आ रही है, उसकी बात याद आ रही है, है ना? आज उसका सुबह फोन आया था तो उसने कहा मम्मी मैं तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो यहां बैठे बैठे भी उसकी याद आ रही है, पता नहीं क्या कर रहा हो, खाना खाया होगा नहीं खाना खाया होगा, पता नहीं क्या कैसे होगा, उसको पेट में दर्द हो रहा था, पता नहीं डॉक्टर से दवाई ली नहीं ली, है ना? तो यहां बैठे बैठे उसको वो पहुंच जाएगी, वाइब्रेशन पहुंच जाएंगे, टेलीपैथी बोलते ना इसको। तो ये हुआ। अच्छा और फिर उसके बाद जिसको इसको आप प्रोलॉन्ग कर दो, प्रोलॉन्ग कर दो तो क्या हो जाएगा, लंबा समय यही भावना रखो तो क्या हो जाएगा, अब सर्कल बन जाएगा, बिंदु 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 पूरा सर्कल बन गया, वृत्त बन गया ना अभी। अब इससे क्या होगा, इससे इससे वायुमंडल बन जाएगा। अब आप यही सोचते रहो कि मैं तो अच्छा बेटा तो बीमार है, क्या तबीयत ठीक नहीं है, उसकी बीवी भी वहां गई हुई है, अकेला है घर में, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, अच्छा मैं क्या करूं, तो सोचने से क्या आपकी वृत्ति बदल जाएगी। मैं यहां बस भट्टी भट्टी में मुझे नहीं बैठना नहीं, मैं जाती हूं अभी यहां से फोन करती, पति तो यहां पे आया नहीं, आप मेरी टिकट कराओ यूएसए की ना, तुम्हारा वीजा, अरे वीजा वीजा तो देख लो कैसे भी, मेरा बेटा बीमार, मुझे पहुंचाना ही है वहां पे जाना। तो उस वायुमंडल के असर में आप फिर आप आके कर्म करना शुरू करते हैं, वो जो हम एक बार कर्म करते हैं उससे इंप्रेशन बनता है, और जो जो हमें उस जो इंप्रेशन बना ना उसको हम जो बार उसको कोई दो चार लोग बोल देना तो क्या होता है, उससे बिलीफ सिस्टम बन जाता है। फिर आप सोएंगे ना रात में, सपना वही आएगा, बेटे का ही सपना आएगा ना, वो बीमार है ऐसे ऐसे, उसको अस्पताल में लेके जा रहे हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा वो फिर सुबह सपना बताओगी आप अपने पड़ोसियों को, अरे ऐसे सपना तो खराब सपना होता है बहुत, ऐसा मुझे दिखा दिया ऐसा। अच्छा दूसरे को बताओगे, अच्छा नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है, ये क्या अब ये बिलीफ सिस्टम बन गया, ऐसा सपना आया तो ऐसा ऐसा होगा, तो ये बिलीफ सिस्टम बन गया राइट। इस जैसे कहते हैं वो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, किसी ने छींक मार दी, इसका मुंह देखा तो मेरा काम खराब हो गया, अरे मुंह तो तुमने अपना ही देखा सुबह सुबह, काम तो उससे खराब हुआ नहीं, तो शिव बाबा का मुंह देखते सुबह सुबह, ब्रह्मा बाबा का मुंह देखते तो काम अच्छा होता ना नहीं। तो ये हम लोग पता क्या करते, उठते ही हमारे सामने क्या होता है, जहां उठते ना जैसे हमारे तो हमारे सामने बाबा का फोटो लगा होता है, आप सब रखते हो ऐसे कमरे में, जहां पे उठते सबसे पहले कौन दिखाई देना चाहिए, बाबा, मतलब उठते हमको बाबा, सोते समय बाबा दिखाई देना चाहिए, उठते समय बाबा दिखाई देना चाहिए। आप सबने ऐसा किया ना, जिन्होंने नहीं किया हाथ उठाओ, अभी लगवा लेना ठीक है, सेट कर लेना ठीक है ना। तो ऐसा मतलब होना चाहिए, तो ऐसे हमारा क्या बन गया, अब ये बार बार किया तो आदत बन गई, संस्कार पर्सनैलिटी बन गई। अभी हमारे सारे फिजिकल हैं, ये सारे क्या है, फिजिकल हैं। मैं सूक्ष्म आपको सूक्ष्म तन बनाने का तरीका बता रहा हूं, सूक्ष्म शरीर बनाने का तरीका बता रहा हूं, ये सारे फिजिकल हमारे विचार चल रहे हैं, फिजिकल भावनाएं हैं, शरीर की भावनाएं हैं, शरीर के हमारे वृत्ति है और शरीर के इंप्रेशंस हैं, शरीर के बिलीफ सिस्टम्स हैं और शरीर की आदतें पड़ गई ठीक है। ऐसा नहीं तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं तो, अभी हमको क्या करना है, बाबा के बच्चे हम ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण माना जो बेहद में रहे, जिसकी बेहद बुद्धि बेहद में रहे सदा और मन बेहद में रहे, मतलब आत्मा बाबा कनेक्शन और ड्रामा। अगर थोड़ा सा भी देह याद आई तो क्या हुआ, इसका मतलब हम क्या है उसमें, मनुष्य के ब्राह्मण। बच्चा याद आया तो क्यों, हम मनुष्य के ब्राह्मण, याद रखना आपने ठीक है ना। कोई और याद आया तो हम मनुष्य के ब्राह्मण, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है ना। हमें भले उसकी हमें सेवा करनी है, हमारा फर्ज है, किंतु उसी की याद में रहे ना, ये गलत पाप है। उसी के बारे सोचते रहे पाप है, ये पाप है, फिर हम ब्राह्मण नहीं है राइट। अब हमको क्या करना है, हमें स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम्स बनाने हैं, स्पिरिचुअल विचार करने। ये जो मुरली ना बाबा की, जैसे आज की मुरली है, अब ये बाबा ने जो मुरली में कहा, अब जो है इसको हमें क्या करना है, मीठे बच्चे कहा सबको यही पैगाम दो कि देह सही देह के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। अब ये बाबा ने संकल्प दिया, अब इसको आप गहराई से कर, इसमें गहराई में जाओ ठीक है। अब जैसे बाबा की मुरली है तो इस बाबा के चार स्टेप में हमें मुरली को, जैसे मुरली आज की मुरली है, होमवर्क है आज का, यही बाबा की श्रीमत है, यही बाबा की डायरेक्शन है, यही बाबा की शिक्षा है ठीक है, और सत्य है। ये क्या है, शिव बाबा सत्य है, एक शिव बाबा सत्य है और कोई सत्य नहीं है, और शिव बाबा की महावाक्य सत्य है, बाकी सब इस दुनिया में झूठ है। झूठ है सच है, सत्य की डेफिनेशन क्या है, सत्य की डेफिनेशन क्या है, सत्य जो सब कभी मरता नहीं, एटर्नल है और जो कभी बदलता नहीं। बहन जी 10 मिनट और ले लो, 10 मिनट और लो, टाइम तो हो गया, वैसे ले सकता हूं नहीं, आधा घंटा नहीं लूंगा। क्योंकि हाँ जी मुझे भी जाना है, बैठ के कोई जाना, ठीक ठीक नहीं मुझे भी नीचे पहुंचना है ना, फिर जाके मुझे पेशेंट देखने, मेरी ओपीडी नीचे ओपीडी ना, अभी शाम की ओपीडी भी देखनी है, पेशेंट बैठ कर रहे होंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा था किस बारे में, तो ये बाबा ने जो सत्य, सत्य की परिभाषा दो है, सत्य कभी बदलता नहीं, ठीक है, दूसरा कभी मरता नहीं। तो आत्मा देह में आने से पहले भी थी, अभी भी है, और शरीर छोड़ने के बाद भी रहेगी, तो ये एटर्नल है, मरती नहीं और बदलती नहीं। ये शरीर क्या है, अभी कितना था, थोड़े दिन पहले कैसा था, 40-50 साल पहले कैसा था, अभी कैसा हो गया, अभी पहले से इतने सारे बाल थे, अभी देखो गिने गिनती गिनती के बाल रह गए, है ना, चश्मा लग गया, मतलब सब क्या, शरीर बदलता जा रहा है ना, शरीर रोज बदल रहा है, तो शरीर तो मैं नहीं हूं, तो मैं जो हूं आत्मा उतनी की उतनी है, वही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, पहले भी था अभी उतना ही, थोड़ा ही बड़ा नहीं हुआ आत्मा, थोड़ी मोटी नहीं हुई, है ना, ऐसे कैसी है, तो ये बदलती नहीं, राइट। तो अब जो है बाबा ने दो, ये तो मुरली है, सत्य है, और मुरली में हर मुरली के एक महावाक्य, जितने महावाक्य है ना इसमें चार बातें मुख्य होती हैं, एक तो इस सब में, सब मुरली के हर महावाक्य में गुह्यता होती है, गुह्यता माना बहुत गहराई होती है, मुरली का हर वाक्य गोपनीय होता है, उसमें बहुत सीक्रेट होते हैं और रहस्य, बहुत सारे सस्पेंस होते हैं, और चौथा अमूल्य होता है, हर महावाक्य अमूल्य है मुरली का, ठीक है, मतलब ये चार बातें बाबा की मुरली में, और इसमें कितने 700 करोड़ आत्मा का सोल्यूशन है, 700 करोड़ आत्माओं की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आपको कोई तकलीफ हो, शरीर की हो रही हो, मन में हो रही हो, बिजनेस में हो रही हो, धंधे में झगड़ों, आपसी संबंध में झगड़े हो गए हो, आप मुरली पढ़ लो, चार पांच लाइन पढ़ लो, देखो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आपको एंजाइना हो रहा हो, छाती में दर्द हो रहा हो, मैं तो पेशेंट्स कहते हैं ना डॉक्टर साहब छाती में दर्द हो रहा, घबराहट हो रही, मैं कहता हूं मुरली निकाल लो जेब से, मुरली पढ़ो, दो मिनट पर बताना दर्द ठीक हुआ नहीं हुआ, दर्द ठीक हो जाता है, सिर दर्द हो रहा हो मुरली निकाल के पढ़ लो, सिर दर्द ठीक हो जाता है, पेट में गैस बन रही हो मुरली पढ़ लो, गैस ठीक हो जाता है, कमर दर्द हो रही हो मुरली पढ़ लो, तो पढ़ो ना, फिर पढ़ते नहीं ना आप लोग, ध्यान से नहीं पढ़ते ना, मोबाइल, मोबाइल तो खतरनाक है, मोबाइल से दर्द होता है, मोबाइल तो जेब में कभी रखना नहीं चाहिए, है ना, पास में भी रखना चाहिए, है ना, हाँ मन वो बता रहा हूं, अभी उसी पे मैं आ रहा हूं। तो ये जो है मैं आपको इसी पे आ रहा हूं कि मुरली से कैसे इलाज होता है ना, बाबा ने कहा था ना बाबा संजीवनी बूटी है, ये मुरली संजीवनी बूटी है ना? तो ये जो मुरली सच में सब सब चीज का इलाज है ना, वंडरफुल है, इसलिए मैंने कहा गुह्य है, गोपनीय, रहस्ययुक्त और अमूल्य। तो बाबा की मुरली का पहले हमने सुन तो ली, और सुननी कहां चाहिए, सुननी कहां चाहिए हमें, जैसे हमारा था गुवाहाटी वुड में डबिंग रूम है, डबिंग रूम है ना, वहां वॉयस की रिकॉर्डिंग होती है, हमारे रिकॉर्ड स्टूडियो भी है ना, वहां पे एसी की आवाज भी अलाउड नहीं है, एसी भी स्पेशल तरह का एसी लगा हुआ है, पंखा भी अलाउड नहीं होता, पहले तो गॉलीवुड नहीं था ना, तो क्या करते थे हमारी शूटिंग अलग करते थे, स्पीस मोमेंट पहले शुरू हो गया था, गॉलीवुड बाद में बना, तो हमें जहां पे हमारी रिकॉर्डिंग करेंगे ना, हमसे कुछ रिकॉर्ड कराते थे, पंखा भी बंद, एसी भी बंद, पसीना ही पसीना हुआ, अच्छा आवाज आवे नहीं, अब अच्छा अभी आप बोलो, अभी सांस घुट रहा है, मैं क्या बोलूं क्योंकि उनको आवाज नहीं चाहिए ना, बीच में कोई आवाज नहीं चाहिए, तो मैं था ना वो गले में ऐसे फांसी लगा के फिर कहते बोलो तो ऐसा करते, अभी तो क्या थोड़ा शांति से हम रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो एक्चुअली बाबा का जो वो जो है ना जो सेंटर है ना, बाबा का सेंटर एक्चुअली रिकॉर्डिंग रूम है, राइट, वो स्टूडियो है, राइट, वहां पे जाके रिकॉर्ड होती है, वहां पे जाके जब मुरली सुन रहे हो ना तो अंदर रिकॉर्ड होती है, और जिस आत्मा के द्वारा भी बाबा मुरली सुनाता है, कोई भी बहन हो भाई हो, छोटी टीचर हो, अभी नई नई बहन आई हो, दो दिन पहले आई हो, या 40 साल पुरानी बहन हो, ये दादी हो कोई भी, बाबा उसके द्वारा शक्ति भी दे रहा है, धारणा वो मुरली अंदर धारण हो जाए उसकी, उस आत्मा के द्वारा, तो वहां रिकॉर्ड होती है, आप मोबाइल खोला, मोबाइल पे मुरली पढ़ रहे हो, वहां से शक्ति आ रही है क्या, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है जो आपका दिमाग खराब करेंगे, ठीक है, आप नाश्ता करते हो ना, नाश्ता क्या रियल में नाश्ता करते हो कि इंटरनेट पे वो एक फोटो देख के सामने नाश्ते की प्लेट रखी, वो फोटो देखिए अच्छा नाश्ता हो, तो देखा दृष्टि देखती, अच्छा चलो अभी नाश्ता हो गया, चलो ओम शांति, पीएमटीवी पे मुरली देख पड़ते हैं, कहते पीएमटीवी मुरली सुन लेते हैं। अरे पीएमटीवी मुरली क्या, वहां से ताकत आ रही है? खाना भी वहीं से खा रहे, नाश्ता उसके बाद नाश्ते क्लास आती है, उसके बाद नाश्ते क्लास आती है, वो नाश्ते क्लास में नाश्ता भी हो गया, बस काम खत्म। काम खत्म हो गया आपका, प्रॉब्लम क्या खत्म? नहीं रियली बता रहा हूं, कितनी लगन होनी चाहिए। पहले तो बात है श्रवण, मुरली के सबसे इंपॉर्टेंट श्रवण। कहां हम जाके सुनते हैं मुरली? आप अपने घर में बैठ के मुरली पढ़ते हो, सुनते हो, कोई बेकार है। मैं भी सुबह सुबह अमृत वेला करते ही मुरली पढ़ता हूं। और मैं तो पुरने डाल के होते ना, किताब नहीं डालते पुरने, देखो मेरी किताब, मेरी मुरली कैसे पढ़ते हो? कैसे मैं एक एक, मेरे को तो कोई लाइन खाली लगती नहीं, मेरे को सारी लाइनें पड़ी होती है, मेरे को एक लाइन वैसी लगती है जो खाली हो। तो मैं कई बार पहले शुरू शुरू में दो चार लाइन मैं कुछ लाइनें खाली छोड़ देता था, फिर दोबारा पढ़ता हूँ, अरे ये तो लाइन मैंने खाली छोड़ी थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो मेरे को कोई लाइन, फिर उसमें से कुछ कुछ डबल लाइन भी कर देता हूँ जहां मेरे को ज्यादा अटेंशन देना होता है, तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है। और फिर मुरली पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद क्लास में आके बैठ के मुरली सुनता हूँ, क्योंकि उस समय फोन भी आ रहे होते हैं मेरे को, उसी समय लोग फोन करना शुरू करते हैं, पेशेंट सीरियस पेशेंट होते हैं ना, जो वही टाइम का है, मुरली में लेट होता हूँ, भले मैं प्रातः जरूर हूँ मुरली, अगर मैं शांति मन में हूं तो मुरली में ना हो, ये हो नहीं सकता है। मुरली में आना जरूरी है क्लास में, कैसे भी करके आओ मुरली में आना चाहिए, और मुरली क्लास में बैठ के सुननी चाहिए, क्योंकि वहां शक्ति मिलती है ना, पीएमटीवी से शक्ति मिलती है ना, इंटरनेट से ना, वो कहते हैं हम दादी दत्तमुनि की मुरली सुनते हैं, दादी रत्नमणि की मुरली मोबाइल पे सुन रहे हैं, अरे वहां से कुछ शक्ति थोड़ी ना निकल के आ रही है, उसमें नहीं पावर आती है वो। कभी कभी आपका रियली मतलब बहुत रेयर आप बीमार हो, बिस्तर में पड़े हो, टांगे फ्रैक्चर हो गई है तो अलग बात है ना, बाकी अदरवाइज बुखार है तो बुखार में भी आना चाहिए, 100 डिग्री बुखार में तो आ जाना चाहिए, पैरासिटामोल खा के आ जाओ, डोलो खा के आ जाओ, है ना, आना चाहिए। तो मतलब ये अटेंशन रखना चाहिए, है ना। हाँ तो भी मुरली में आकर लेट के सुन लो भाई, कोई बात नहीं ना, व्हील चेयर पे आके सुन लो। रियली मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली ये बहुत सीरियस बात मैं कर रहा हूँ। अगर सूक्ष्म शरीर बनाना है तो सूक्ष्म वतनवासी बनना है, कर्मातीत बनना है, तो इसलिए मैंने वो कल वाली बात की ना, तो कल से मैंने मुरली का जो पॉइंट किया, तो इसलिए अटेंशन रखने की आवश्यकता है। तो मुरली सुनना क्लास में आना जरूरी है। मुझे याद है, मुझे जब हमारे जब वो होता ना, मैं जब MBBS MD कर रहा था ना दिल्ली में था, तो उसमें मेरा बेटा 3 साल का था, हमने हमारे कॉलेज जहां मेडिकल कॉलेज के सामने ही स्कूल था एक, और मुरली जो है मेरे को 8:30 हॉस्पिटल पहुंचना होता था, तो मैं चार बजे हम उठते थे, 4 से 5, 4:45 तक योग करते थे, और फिर खाना बनाते थे, मतलब खाना जो है वो तो युगली बनाते थे, 90% खाना वही, मैं तो थोड़ी सी बीच में एक्टिंग करता था, थोड़ा थोड़ा एक कर दिया ताकि उसको लगे कि हाँ थोड़ा कर रहा है, नहा धो के जल्दी से ना, मतलब थोड़ा सा वो मिल्क खाना बना दिया, तो खाना बनाया और बना के उसको खान पैक किया उसका, और उसको मतलब फिर उसका स्कूल छोड़ा, उसको 7:45 का उसका स्कूल था, तो 6:30 उसको निकलते थे हम, उसको स्कूल छोड़ा, फिर वो स्कूटर से हमको 2.5 किलोमीटर दूर था मेरा सेंटर, तो 2.5 किलोमीटर हम लोग वहां सेंटर पे गए, सेंटर से जाके मुरली सुन के 8:15 घर पहुंचते, 8 बजे मुरली पूरी हुई, 8:15 घर पहुंचते थे, और 8:15 घर पहुंच के, और फिर हम 8:30 मुझे जाना होता था, चपाती आके बना लेते थे, आटा भिगोया होता था उसकी चपाती बना लेते, मैं 2 रोटी बनाई खाया और खा के और तुरंत मैं भाग जाता था, सबसे पहले क्लास में पहुंचता था, मैं सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचता था, 8:30 मुझे पहुंचना होता था, 8:30 से भी 1 मिनट पहले पहुंच जाता था, और फिर कभी मुरली मिस नहीं किया, चाहे वो मेरा एग्जाम था MD का प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जाम था, उस दिन मैं मुरली सुनने गया, प्रैक्टिकल एग्जाम था 9 बजे मुझे पहुंचना था, वहां से 10 किलोमीटर दूर था मेरा सेंटर, तो भी मैं मुरली सुनने गया, और मेरा प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा, थ्योरी भी बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल भी इतना अच्छा हुआ, लोग 18-18 घंटे पढ़ते थे, मैं 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि ज्यादा समय मेरा पेशेंट्स में बीतता था, वार्ड्स में बीतता था, क्योंकि मैडम ने सारी ड्यूटी मेरी लगा रखी थी, हर वार्ड में जो सीरियस पेशेंट होगा तुम ही देखने जाओ, तुम ही अटेंड करो, तुम ही लिख के आओ, वो खुद ड्यूटी उसकी थी, ड्यूटी मेरे को दे देती थी, कोई भी सेक्रेटरी आएगा हेल्थ मिनिस्ट्री से, कोई मिनिस्ट्री से आएगा, कोई भी हमारे यहाँ मिनिस्ट्री के बहुत लोग आते थे, दिल्ली में थे ना हम लोग, तो राम मनोहर लोहिया में थे, सारे जो है ना सेक्रेटरी, सारी मिनिस्ट्री के लोग हमारे दिखाने आते थे, तो मैडम कहेगी नहीं नहीं मेरा बेटा है ना, ये मुझे बेटा कहती थी, ये मेरे से भी एक्सपर्ट है, तुम इसको दिखा लो, तो मेरे को सारे पेशेंट दे देते, तो मतलब मैं सारा ड्यूटी करता था, सारा कुछ करता था, तो बाबा ने उस समय क्या हुआ, बाबा ने उसमें चार एग्जामिनर होते हैं और जो जो केस मुझे मिला उस तीन लड़के फेल हो चुके थे, तीन लड़के फेल हो गए थे और उसमें जो है मेरे को चौथा मैं था, उसको मेरे को केस मिला। तो उसने सोचा कि जिसको दे रहा था ना, कहता डॉक्टर साहब इसमें तीन लड़के फेल हो चुके हैं, जब मुझे दिया ना उसने बताया जो लौट कर था केसेस, आज तीन लड़के फेल हो गए, तो मेरे को तो आप पे दया आ रही है, आपका भी नंबर लग गया। तो मेरे को वो अच्छा, तो मतलब ये जो है मेरे को वो केस मिल गया। तो मैंने जैसे मैंने देखा था, पर सुबह से बाबा क्या मेरे को ये यहाँ मुझे बुद्धि को टांग के रखा था ऊपर ही, है ना। तो जैसे मुझे कुछ मुश्किल लग रहा था, बाबा जैसे मेरे साथ, ऐसा मुझे फील हो रहा था। और जैसे मुझे वो केस ऐसा था, मैं वो केस मैंने पढ़ा हुआ था पहले से, मुझे मतलब वो इतना मतलब था कि मुझे मैंने वो केस अच्छे से देखा हुआ था, वो कई तीन चार केस देखे हुए थे ऐसे। तो मैंने तो फट वो कर दिया सारा। और वो केस की बात क्या थी उसका, अच्छा वो था जो था ना वो केस था, उसके वो मेल पेशेंट था, मतलब आदमी था, उसके दो एक्स्ट्रा निप्पल थे जो था, एक्स्ट्रा जो होते ना, दो यहाँ थे, दो ये दो होते ही हैं, दो उसके एक्स्ट्रा थे। एग्जामिनर फेल क्यों कर रहा था, वो लड़के क्या कर रहे थे, बाकी सारा एग्जामिन कर रहे थे पेशेंट को, किंतु वो नहीं बता रहे थे। दो एक्सेसरी थे ना, जो दो एक्सेसरी वो मतलब एक्स्ट्रा थे उसके। तो जैसे मैंने बोला ना एग्जामिनर को, मैंने कहा सर ये दो एक्सेसरी वो है, तो एग्जामिनर कहता पास हो गए। मतलब अटेंशन से बोलता ना, किसी ने बताया, तीन लड़के फेल इसी कारण हुए थे, केस पे फेल नहीं हुए थे उनका, मतलब पूरा पेशेंट को एग्जामिन नहीं किया ढंग से, अननेचुरल था। मतलब वो एक फाइंडिंग थी ना, वो देखनी चाहिए थी ना, फाइंडिंग थी ना पेशेंट की, तो मतलब ये देखनी चाहिए थी। तो ये जैसे मेरे सारे केसेस में से बाबा वो एग्जामिनर आया, कहता इसको भी फेल करूंगा, वो इस अटेंशन, मैं तो सारा बोलता गया, जो पूछे उससे पहले ही बोल देता था। अच्छा एक जगह कहता है वो एग्जामिनर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा सर यू कैन सी दैट, ओपन द बुक, फला पेज पे फला लाइन में लिखा हुआ, मेरे को पेज नंबर भी याद था। एग्जामिनर सही क्यों हो गया, मतलब उस समय याद आ गया नहीं, तो लोग यूं करते रहते हैं एग्जाम होता ना, तो क्वेश्चन पूछते सिर पर खुजली शुरू हो जाती है उनको, तो मेरे को तो खुजली नहीं हुई, मेरे खुजली थी भी नहीं, तो उनको तो खुजली थी। तो बाबा कैसे मदद करता है अगर आप सचमुच नियमों पे चलते हो ना। मैंने कोई लोग तो रट्टा मार रहे थे एग्जामिनर उससे पहले पहले भी किताब खोल के पढ़े थे, मैं तो किताब खोल के नहीं खड़ा था, मैं तो आराम से गया। अच्छा वो वहां पे जो नर्स थी ना, मैं आपको एक फायदा और बताता हूँ, जो नर्स थी ड्यूटी पे थी, मैं पहले वहां पे जब हाउस जॉब मैंने किया था ना वहां पर MBBS करने के बाद उस हॉस्पिटल में, तो नर्स वो अस्थमा की मरीज थी, बेचारी पतली दुबली सी नर्स थी, तो और अस्थमा था उसको, दमे की बीमारी थी, सांस फूलता था। तो मैं हाउस सर्जन था, तो मैं जो है वो बेचारी वो बैठ जाती थक जाती थी दवाई बांट के भी, तो मैं कहता मैं होता था वो नर्स, दो ही जने होते थे शाम के समय, तो कभी ड्यूटी होती थी हमारी, तो वो कहती वो आके थक जाए हाफने लगती थी, तो मैंने कहा नर्स आप बैठ जाओ, सिस्टर आप बैठ जाओ, मैं बांट देता हूँ। तो मैं मतलब उसकी दवाई भी बटवा देता था और मतलब उसकी मदद भी कर देता, दवाई वगैरह इंजेक्शन लगा दिया उसको, कुछ मतलब तबियत ठीक नहीं है तो उसकी तबियत बेचारी, उसकी फैमिली भी थी उसकी, तो मैं मदद कर देता था। अब वो ठीक हो गई थी, जब तक चार पांच साल बाद मैं जब वापस आया ना, मेरा एग्जाम था, वही नर्स इंचार्ज थी वहां पे। अब नर्स इंचार्ज आई तो उसने इतना VIP ट्रीटमेंट दिया, डॉक्टर साहब आओ, तो मेरे को दूध वगैरह गर्म करके ले आए, मेरे बेड में जहां था ना मेरा जहां पे पेशेंट था वहां दूध गर्म करके, चाय तो चाय पीते नहीं है ये, तो दूध गर्म करके लेके आए। फिर कहते मैं किताब आपके लिए वहां रखी है मेरे कमरे में, आप कह रहे आप किताब वहां के देख लेना, मतलब बार बार जैसे ना मेरे को VIP ट्रीटमेंट, इतना VIP ट्रीटमेंट उसने दिया बहन ने, कम्फर्टेबल मैं इतना हो गया। ये तो सबको नर्स तो बहुत होते ना, एग्जामिनर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके तो बहुत बॉस बन के रहती है वहां पे, तो वो उसमें एग्जामिनर एग्जाम के टाइम वो बॉस बन जाती है नर्सेज ना, किंतु वैसे नहीं, वैसे बॉस नहीं बन के रहते, एग्जाम में बॉस बन जाती है। तो मेरे को तो बहुत अच्छे से मतलब, कोई आपने अच्छा कर्म किया हो कभी पांच छह साल पहले, किसी की मदद की, तो वो टाइम पे आप काम आ जाती है। तो मतलब आप ये देखो कि बाबा के साथ श्रीमत पे चलना, उसमें बाबा मदद करता है, मेरे सारे केस अच्छे हो गए, लॉन्ग केस शॉर्ट केस अच्छे हो गए। फिर क्या हुआ, एग्जामिनर जब चार एग्जामिनर बैठे थे, वाइवा होता है, वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं, चारों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। MD मेडिसिन का एग्जाम ऐसा होता है, कोई लड़का आप में से कोई डॉक्टर है कि नहीं, MD है कोई, MD मेडिसिन है कोई नहीं है। MD मेडिसिन का एग्जाम ऐसा होता है, जो कोई लड़का एग्जाम देने के बाद ये नहीं कहता पास हो गया, वो इतना खींचते हैं एग्जामिनर, चारों एग्जामिनर बच्चे को इतना खींचते हैं, वो उसको यही होता है मैं फेल हो गया, मैं फेल हो जाऊंगा, डर होता है उसको फेल होने का। अब मेरे को जब वो चारों एग्जाम जब मैं पहुंचा ना वाइवा के लिए, कहते ये लड़का ना हमारी पकड़ में नहीं आया, ऐसे ही बोल इंग्लिश में बोला उन्होंने, मतलब वी कुड नॉट, मतलब इसको हम हरा नहीं पाए, इसको हम डरा नहीं पाए, हर बात का आंसर कर देता है, अब इसको खींचना है, खींचना इसको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो मतलब इसको नहीं आते हो, तो उसे शुरू किए पूछने, तो मेरे पता नहीं कैसे मुझे शायद न मान, अगर मैं टेंशन में होता ना याद आते कि तो बाबा ने ऐसी बुद्धि करके रखी थी, उसने जो पूछा मैंने आंसर करता गया, आंसर करता गया, आंसर करता गया, आंसर करता गया। और मैं अकेला कैंडिडेट था, इसकी शादी हो चुकी थी, हम 19 कैंडिडेट थे, एमडी का एग्जाम था, जब सब कुमारे थे मेरे को छोड़ के, है ना, सब कुमारे थे, और सबके सब 18-18 घंटे पढ़ते थे, अस्पताल भी नहीं आते थे पेशेंट, सारा टाइम किताबें ही पढ़ते रहते थे, और मैं सारा दिन अस्पताल में काम करता था, और घर में आता था, घर में भी बेटा था, तीन साढ़े तीन साल का बेटा था, वाइफ थी घर में, तो मतलब मैं को घर में आके कभी कभी काम भी करना पड़ता, और भी कुछ देखना पड़ता था, चीजें भी लानी पड़ती थी घर की कभी कभी, तो मतलब मैं सारा काम करके भी मेरे को फिर उन्होंने क्या किया, जब फिर मेरे को वो था ना गोल्ड मेडल देना था, तो मेरे को क्या हुआ, उन्होंने लड़ाई हो गई आपस में कि भी हाँ, वो कहती मैं मेरे कॉलेज के लड़के को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, फिर लड़ाई बाद में लड़ाई वड़ाई काफी हुई, फिर अंत में मेरे को ही गोल्ड मेडल उन्होंने दिया। तो ये बाबा की कमाल होती है, ठीक है। एमडी का एग्जाम देना, एमडी मेडिसिन का एग्जाम ऐसा नहीं होता, कोई हंसी खेलनी है, इसलिए कोई भी काम करना हो, अमृत वेला, मुरली और अटेंशन, सारा दिन मुरली की अटेंशन, मुरली की अटेंशन होनी चाहिए, बाबा क्या कहता है मुझे वो करना है, तो मनन करो, फिर मुरली जो बाबा ने दी ना सुबह सुनी, उसको मनन करो, मतलब रिवाइज करो, फिर चिंतन, चिंतन माना बाबा ने ये कहा कि मैं कैसे बनूं, गहराई में चिंतन, चिंता लगाओ, गहराई में जाओ, मुझे ये बनना ही है, मनोना रिवाइज, चिंतन माना मुझे बनना ही है, और फिर मंथन कैसे बनना है, कैसे बनूं बाबा, बाबा आप कहते हो सब अपने को आत्मा समझो, सब सबको भूल जाओ, देह के सब धर्मों को भूल जाओ, कैसे भूलूं बाबा, इतने सारे काम है, इतने सारे काम करने पड़ते हैं, कैसे भूलूं, तो बाबा से ऐसे करो, फिर मंथन मतलब बाबा साथ में आ जाएगा, फिर आपके लगन, लगन लग जाएगी, तो उसमें मंथन निकले, जूस निकलेगा, तो जूस निकलेगा, तो फिर क्या होगा, फिर सिमरण, सिमरण माना फिर उसको सिमर सिमर कार्य में लगा दो, कार्य में लगा दिया माना अब संस्कार बन गया, नया संस्कार बन गया। तो ऐसे बाबा की जो मुरली को हम करेंगे ना, तो ऐसे हमारा बुद्धि भी साफ होती जाएगी, बुद्धि माना दिल हमारा साफ होता है, दिल में हमारे बाबा आता जाएगा, आत्मा सोल कॉन्शियसनेस आती जाएगी, बाबा आता जाएगा, बाबा ABCD आता जाएगा, एक एक संबंध की अनुभूति होती जाएगी, और D4 ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला, तो ये अंदर से बैठता जाएगा, विवेक आपका ईश्वर जैसा होता जाएगा, बुद्धि दिव्य होती जाएगी, चित्त शांत एकाग्र आनंद में होता जाएगा, और फिर आपकी जो स्मृतियां जो है ना मन में, वो वाली संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप वाली स्मृति जागृत होती जाएंगी, आपकी स्वरिष्ठता स्वरूप की स्मृति जागृत होती जाएगी, और देवता स्वरूप की स्मृति, तो आपकी वृत्ति आत्मिक होती जाएगी, भावना सत्प्रति शुभ होती जाएगी, संकल्प शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली कल्याणकारी होती जाएगी। तो एक तो ये क्या होगा, ये पुराना तन भले कितना घुटने खराब हो कुछ भी है, जब आप पॉजिटिव सोचोगे अच्छा सोचोगे, शांति प्रेम सुखानंद की अनुभूति करोगे, तो एंडोर्फिन निकलेंगे, एंडोर्फिन होते हैं नॉर्मल मॉर्फिन, नॉर्मल जैसे क्या अंदर की मॉर्फिन होती है, नेचुरल पेन किलर, कैसे भी घुटने दर्द कर रहे हो, कैसे भी कमर दर्द हो, कैसा भी सिर दर्द हो, कैसा भी हार्ट का दर्द हो, दर्द खत्म हो जाएगा। मॉर्फिन का इंजेक्शन, हार्ट अटैक होता है ना किसी को, तो मॉर्फिन का इंजेक्शन सबसे पहले देते हैं, वो फील करता है मैं मरने वाला हूं, उससे उसके अंदर मरने की जीने की होप आ जाती है, खुशी आ जाती है, अपने आप को बहुत लाइट महसूस करता है, ऐसा लगता है उड़ रहा हूं। ये मॉर्फिन अफीमची होते हैं ना, नाली में पड़े होते हैं पर ऐसा फील करते हैं मैं बहुत ऊपर हवा में हूं, मैं वो अफीम खाने की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर वाली अफीम है ना। जितना ABCD का उसको ABCD को रिवाइज करो, बाबा की मुरली को मनन चिंतन मंथन सिमरण करोगे, उतना अंदर क्या आता जाएगा, अंदर मॉर्फिन निकलती जाएगी, वो लाइट की फीलिंग आती जाएगी, हल्केपन की फीलिंग आती जाएगी, ठीक है, और उससे आपकी नई स्मृतियां जागृत होंगी, पुराने वाली कलप पहले वाली, नई वृत्ति नई भावना और नई संकल्प चालू होंगे, और उससे आपकी बुद्धि और मन शुद्ध हो जाएगा। अब ये बुद्धि और मन शुद्ध हो गया तो क्या होगा, अब ये लाइट की बॉडी बन गई, अब ये लाइट की बॉडी बनी, इनके अंदर स्थूलता समाप्त हो गई, देह देह के संबंध स्वभाव संस्कार देह के पदार्थ अपने आप निकल गए, निकालने नहीं पड़े, अपने आप निकल गए। अब ये लाइट की बॉडी, अब जो है इससे हम क्या होगा वहां पर सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन ऐसा नहीं कि आपको यहां से बीच में सूर्य चांद तारे आएंगे, ऐसा नहीं आता, देह अभिमान से परे हुए सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, ठीक है। देह अभिमान आप सोल कॉन्शियस बने, एबीसीडी को रिवाइज किया अंदर अंदर, रियलाइज अनुभव किया और आप कहां पहुंच गए, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन ऐसा नहीं कोई फिजिकल वतन नहीं है, फिजिकल मतलब सूर्य चांद तारों के पार, पांच तत्वों के पार, ये पांच तत्वों का बना शरीर है, अपने पांच तत्वों से बाहर निकलो सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, ठीक है। कई लोग बहुत कोशिश करते हैं, बीच में सूरज आया नहीं, अभी तो आया नहीं, अभी तो चांद भी नहीं आया, अभी तो बादल ही नहीं पहुंचे। तो वो प्रॉब्लम उसमें नहीं होता, अपने देह भान से बाहर निकले सोल कॉन्शियस हुए, यही बैठे बैठे आप ऐसा महसूस करोगे आप सूक्ष्म वतन पहुंच गए, बाबा की गोद में पहुंच गए। बाबा हमको ब्राह्मण जन्म देते ही दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे देता है गिफ्ट में, और उसमें बटन दबाओ पवित्र संकल्प का, बाबा आपसे मिलना है, वो सीधी लिफ्ट कहां उतारती है, बाबा की गोद में उतारती है, सूक्ष्म वतन नहीं उतारती है, बाप दादा की गोद में उतारती है, ठीक है। बाबा गोद में बैठे, फिर बाबा अपने अनुभव कराता, ये देखो तुम्हारा बाप है, माँ कहती है देखो तुम्हारा बाप ये बैठा, शिव बाबा बैठा, माँ बाप के अनुभव, टीचर का अनुभव, मैं नहीं जाऊंगा अभी, टीचर सतगुरु का अनुभव, बंधु का, बंधु सखा साजन सर्जन बच्चा, ये नौ मुख्य संबंध की अनुभूति होनी चाहिए, तो एक एक संबंध की अनुभूति हो जाएगी ना, तो चलते फिरते ऐसा फील होगा बाबा हर समय हमारे साथ है, हम हर समय सूक्ष्म वतन में, राइट। और जब सूक्ष्म वतन में कोई विकर्म नहीं होता है, सूक्ष्म वतन में विकर्म विनाश नहीं होते हैं पर विक्रम होते नहीं, ठीक है। तो बाबा की गोद में रहोगे वहां पे विक्रम विनाश विक्रम नहीं होंगे। अभी हम क्या करते हैं, विक्रम विनाश भी करते हैं सुबह सुबह शाम, और करते भी सौ गुना बन जाते हैं, तो इसलिए वो फिर हम वहीं के वहीं रहते हैं, है ना। हम लोग ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे बढ़ते हैं, पीछे जाते हैं तो वहीं खड़े रहते हैं, हम सोचते हैं बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ का एक इंच भी आगे नहीं बढ़ते हैं। कई बार कल भी गुस्सा किया था, आज भी उसको देख के गुस्सा किया, आज भी गुस्सा आया उसको देख के, कल उसको देख के टेंशन हुई थी, आज भी वही टेंशन है, है ना। आज भी सिर दर्द हुआ, फिर चाय पीनी पड़ी, कल भी चाय पीनी पड़ी थी, तो मतलब वही की वही चीजें कर्मेंद्र जितनी बनते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आपकी स्थिति होगी ना, तो फिर आपके अंदर नशा जो होगा ना, अंदर वाला जो फीलिंग होगी ना, वो कल वाला विक्रम विनाश हो जाएगा, वो अमृत वेला होगा। अमृत वेला फिर जो साधन सूक्ष्म वतन वासी बन के रहेगा, वो अमृत वेला एकदम बाबा के परम धाम में चला जाएगा। परम धाम माना एकदम मन बुद्धि संस्कार में संकल्प ही रहेगा, बस परम धाम मैं और बाबा बिंदु, और वहां विक्रम विनाश नष्ट हो जाए, वो पुरानी वाली मेमोरीज डिलीट होती जाएंगी, विकारों वाली, देहभान वाली, और उससे फिर विक्रम विनाश हो, फिर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त, राइट। तो साधन क्या है, तो क्या करना है, मुरली को क्या करना है, मुरली चार्ट और संडे की मुरली 7 दिन लगते हैं पूरी अंदर जाने में, है ना। 7 दिन उसका मनन चिंतन मंथन से मिलन करना होता है, और इस मुरली का रोज शाम तक पूरा करना होता है, ठीक है। तो और आप जो भी काम करते हो, ऑफिस में करते हो, बैंक में करते हो, घर में करते हो, कोई काम में बाधा नहीं आएगी, बल्कि और परफेक्शन से काम होगा, और समय पर सब कुछ याद आएगा, एक्यूरेट होगा, है ना। अगर ये इसको मुरली को छोड़ के और बातों में लग जाओगे तो सारे टाइम पे काम भूल जाओगे, टाइम पे काम फालतू काम करते रहोगे, बाकी रियल काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, पक्का। मैं पेशेंट देखते देखते भी मुरली पढ़ लेता हूँ बीच में, ना है ना, कार में बैठता हूँ तो मुरली पढ़ लेता हूँ। ये मुरली क्या है, लव लेटर, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ये बाबा का लव लेटर है हमारे लिए 4 पेज का, और लव लेटर कहाँ रखते हैं, दिल के पास, और कब पढ़ते हैं पहले आसपास देखते हैं कोई है तो नहीं, है ना, फिर वही आसपास ना हो फिर क्या करते हैं, जेब से निकालते हैं छुपा के, वो भी तब भी ना ऐसे छुपा के, फिर ये देखते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, मेरे लिए नूरे रतन, वो मेरा साजन मेरे को नूरे रतन बोलता है, मस्तक मणि बोलता है, मैं तो कहां मस्तक मणि कहां नूरे रतन, पर वो मेरे को समझता है ना, फिर मुस्कुरा के फिर जेब में देखो आ रहा है जेब में, फिर देखा अभी कोई नहीं है, फिर निकाल लेते हैं, फिर सोचते रहते हैं आज की मुरली ना, हथ काटे दिल यार्डे, तो हाथों से काम करते रहते हैं, बस वही सोचते रहते हैं बाबा मेरे लिए क्या सोच रहा है, बाबा मेरे लिए क्या कर रहा है, बाबा मेरे को कैसे देखता है, बाबा मेरे को कैसे देख रहा है, बाबा मेरी कितनी प्रेज करता है ना, मैं तो बेकार था, निकम्मा था, फिर तो बाबा ने मुझे क्या बना दिया है ना। वो तो ना एक गीत था ना, कौन सा किसी फिल्म था ना, मुझे अर्श से उठा के, फर्श से उठा के फर्श पे बिठा दिया, कहा फर्श नहीं अर्श पे बिठा दिया। तो लेट बहुत हो गए। अच्छा दादी का, चलो लास्ट दिन का बताता, लास्ट दिन, चलो एक उसमें लास्ट दिन जो था ना 25 अगस्त की बात बताता हूँ। मैं दादी को सुबह सुबह 9 बजे देखने गया, दादी को मैं रोज देखने जाता था, तो 9 बजे मैं देखने गया दादी को। तो दादी को मैं, दादी का ऑलरेडी किडनी फेल हो चुकी थी, कि दादी किडनी में यूरिन बनना बंद हो गया था, और हमने डिसीजन ले लिया था कि अभी, और दादी को ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो हमने वैसे डिसीजन लिया था कि अभी दादी को हम ना और कुछ नहीं करेंगे। वेंटिलेटर पे थी दादी, मतलब मशीन से सांस ले रहे थे। तो दादी को सुबह देखा मैंने, दादी का हार्ट रेट 80 था, मॉनिटर लगा 80 था, बीपी भी 90/60 था, 100/60 90/60 ठीक था, मतलब पैरामीटर सांस ठीक चल रहा था, सब ठीक था। तो मैं देख करके, मैंने चेकअप करके, मैंने उसमें दादी की केशीट होती थी उसमें ऑर्डर लिख दिए, आज के ये ऑर्डर है, आज ये ऐसे से करना। मैं दरवाजे के पार आया, दरवाजे के पास आया चेकअप करके, 9:05 9:10 पे आया हूँ शायद। जैसे बाहर आया तो मैं दरवाजे पे आवाज आई, मुझे जैसे आवाज आई दादी ने कहा, जैसे ऐसे अंदर से आवाज आई, कहाँ से आवाज आई, गुप्ता जी मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा कहाँ से आवाज आई, तो मैं दादी को भी देख के आया, अभी कहा दादी तो बेहोश है, कोमा में है, दादी की आवाज कहाँ से आई। तो मैंने सोचा, पहले तो इग्नोर करने की कोशिश की, फिर दोबारा आवाज आई, गुप्ता जी मैं जा रही हूँ। तो मैं वापस गया, फिर मैंने देखा तो वही मॉनिटर पे देखा, पल्स वही 80, और मैंने बीपी दोबारा देखा, चेस्ट देखी और सब देखा, मैंने कहा वैसे ही पैरामीटर है, सब कुछ है। फिर मैंने कहा ठीक है, प्रकाश वहां खड़ा था, मैंने कहा ठीक है दादी ठीक है, ऐसे से अभी ध्यान रखना, नर्स थी, एक नर्स थी, मैंने कहा इसको सब ऑर्डर लिख दिए मैंने, आप कर लेना। दरवाजे पे वापस आया, फिर आवाज आई, गुप्ता जी मैं जा रही हूँ। अभी मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो जैसे ही मेरे को आवाज आई ना ये वाली, तीसरी बार जब आवाज आई, तो मैंने फिर प्रकाश को बोला, दादी अभी प्रकाश, अभी दादी के जाने का टाइम हो गया, अभी सबको बुलाओ, मोहिनी बहन को बुलाओ, मुन्नी को बुलाओ, दादी दादी प्रकाश, दादी जानकी को बुलाओ, दादी गुलजार को बुलाओ, और निर्भय भाई सभी को बुला लो, दादी का जाने का समय हो गया। कैसे मुझे पता नहीं, कैसे अंदर से आवाज निकली, मैंने सब और सबके सब आते गए, सबके सब आते गए, ठहरते गए, खड़े होते गए, 9:30 तक लगभग कमरा भर गया दादी का, दादी के गुजार भी आ गए, दादी जानकी भी आ गए, निर्भय भाई आ गए, सभी हमारे सभी सीनियर सिस्टर सब उसमें थी, वहीं पर ही आप भी उसमें वहीं पर ही थे, सभी के सभी, सभी बड़ी बड़ी बहनें सब आ गई। और दादी का देखो तो बस वही 80, और वो सब कुछ पैरामीटर वैसे के वैसे, रेस्पिरेशन मेरे मन में अब ऐसे से होने लगी दुख दुख। तो मैंने कहा सबको इकट्ठा कर लिया, दादी जा रही है, दादी और बुलाया मैंने सबको। अभी मेरे को ऐसा होने लगा, मैं क्या करूं, मैं तो लोग अभी कहेंगे लोग क्या। तो जो आता जाए, मैंने कहा दादी का, दादी अभी जाने का समय, दादी का समय हो गया, गुलजार दादी का जाने का समय हो गया, अभी दादी का जाने का समय हो गया। तो मैं सबको ऐसे बोलता बोलता सब खड़े होते गए, दादी कैसे सब बाबा की याद में खड़े हो गए, और सब घड़ी को भी देख रहे हैं, मॉनिटर को भी देख रहे हैं। तो 9:35 40 हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैं अंदर से, मेरे को डर लग रहा था अभी क्या कहेंगे लोग कि डॉक्टर ने क्या हंगामा मचा दिया है ना। तो वो तो अंदर की आवाज थी। तो अभी देखा तो 9:40 के आसपास दादी का ना हार्ट रेट गिरने लगी, 80 से कम हुई, फिर ऐसे से मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गिरते गिरते फिर 60 हुई, फिर 55 हुई, ऐसे से याद है आपको, तो 9:45 के आसपास ऐसे शुरू हुआ था। तो नीचे गिरते 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 40 हो गई, फिर 36 हुई, फिर 33 हुई, 30 हुई, 30 के बाद 0 हो गई। और दादी मतलब वो लाल जो थे ना, पैर लाल थे, हाथ लाल थे, सब वाइट हो गए, बस 0 हो गया, बीपी भी 0 हो गया, सब कुछ 0 हो गया। अब दादी चली गई, दादी जैसे मतलब दादी गई, अभी पैरामीटर वेंटिलेटर तो अपना सांस दे रहा था, वो तो आर्टिफिशियल दे रहा था। तो सबके आंखों में आंसू आने लगे, क्या ना वो थी जब सभी, मैं नाम किसे नहीं लूंगा, पर कईयों के आंखों में आंसू शुरू हो गए। तो मैंने याद है आपको बोला, मैंने बोला था, सब तो दादी जानकी चुपचाप खड़े थे, दादी गुलजार चुपचाप खड़े, निर्भय भाई चुपचाप खड़े थे, मैंने बोला दादी आप सब याद करो ना बाबा को, ऐसे थोड़े नाम करते हैं कोई, आप सब बाबा को याद करो, है ना। अब देखो मैं छोटा सा बच्चा उनको बोल रहा हूँ सबको कि बाबा को याद करो, है ना। सब फिर बाबा की याद में टिक गए, सबने मतलब टिक गए। वो थोड़ी देर में कहा दादी फिर वापस आ गई, याद है, और नमज वापस 80, मॉनिटर वापस चालू हो गया 80 फिर शुरू हो गया। अच्छा वो भाई आ गई, सांस भी आ गया, पैरामीटर सब दिखाई देने शुरू हो गए, लाल हो गया, फिर पैर लाल हो गए, चेहरा लाल हो गया वापस। अभी देखा लाल हो गया तो फिर देखा थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर में देखा तो फिर वापस कम होने लगा, धीरे 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 कम होते होते 10:05 पे फिर वापस जीरो हो गया, है ना। तो जीरो हो गया और उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा दादी अभी गई, है ना। तो अब फिर मैंने कहा दादी अभी गई, फिर सबके सब ना, फिर दादी का 10:05 पे दादी का ऐसे मैं दादी, फिर बाद में संदेश में आया था कि दादी वहां पे दादी वापिस, बाबा ने दादी को भेजा, बाबा ने कहा दादी ने कहा मैं ऊपर कैसे आ गई, तो बाबा ने दादी को नीचे भेज, जाओ तुम नीचे जाओ देख के आओ जाओ। तो दादी आई, फिर देखा शरीर काम का नहीं है, फिर दादी वापस चली गई। तो ये आखिरी का सीन जो उस दिन का सीन था जो दादी ने मतलब, और वो कैसे अंदर से वो दादी ने मुझे कहा, है ना, किसी को नहीं कहा, सिर्फ मुझे कहा कि मैं जा रही हूँ, है ना। तो फिर वैसे कैसे वो सेंस हुई, कैसे वो हुआ, है ना, और किस तरह से दादी गई। दादी के साथ अनुभव ऐसे ऐसे सहमत, मतलब मैं बहुत साल दादी के साथ रोज 8 बजे मेरा मिलना होता था, है ना। फिर तो एक क्लास 2 घंटे क्लास में दादी के साथ अनुभव क्यों करा दूं बाद में, ठीक है। ओम शांति। बाबा की मुरली क्लास है, बाकी तो हम सब, मैं आपको बताऊं, एक ध्यान रखो हमेशा, एक बाबा और बाबा की मुरली यही पकड़ के रखो। चार धार, चार मर्यादाएं पक्की, पवित्रता की जितनी गहराई बढ़ाते जाओ, है ना। वैध संकल्प करना बंद कर दो, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों करते, ये सबसे बड़ी पवित्रता है, ठीक। पवित्रता गहराई बढ़ाओ, उतना अमृत वेला अच्छा हो, मुरली अच्छी होगी, अटेंशन रहेगा, बाबा से अच्छा लेटर लिख पाओगे। फिर सुशुद्ध सात्विक भोजन, फल सब्जी रोटी बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, दूध पियो, और बाकी ये जो पराठा पकौड़ा समोसा रासिक भोजन है, इससे आलस पैदा होता है। कोई पराठा पकौड़ा समझ खा के और फिर कहे मैं बाबा को याद कर लूं, यो लगेगा नहीं, वो आप ऊपर जाओगे वो भोजन नीचे खींचेगा, ठीक है। फिर कोल्ड ड्रिंक, एक मिनट, कोल्ड ड्रिंक जो होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक होते ना जो पीते ना, कोका कोला पेप्सी पीते हैं लोग, और फिर चाय कॉफी पीते हैं, और ये जो अचार खाते हैं, और क्या खाते हैं, लहसुन प्याज तो कर खाते नहीं हम लोग को भी,
वो तो नहीं खाते।
तो ये जो चीजें ब्राह्मण खाते हैं, बाजार के बिस्किट खा लेते हैं, बाजार की आइसक्रीम खा लेते हैं, इनमें भी ऐसे केमिकल होते हैं, उत्तेजना प्राप्त पैदा करने वाले पदार्थ होते हैं, वो फिर खा के सोचो मैं योग लग जाए बाबा से। ये बाजार शादी में जाते ना वहां, सलाद तो हम खा लेते हैं, तो ये तो सलाद तो वो है ना, अरे क्या काटने वाला कौन है, मशीन को ऑपरेट करने वाला कौन है। कॉफी पी लेते ना उसकी वाली, वो जो ना वो मशीन काफी है, पी लेते वो मशीन काफी है ना, मशीन की काफी, वो मशीन में पाउडर डालने वाला कौन है, है ना। तो ये लालच छोड़ देना चाहिए, ठीक है। एकदम बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, है ना। कभी किसी के हाथ की दृष्टि, कहते किसी की दृष्टि भी ना पड़ी उस भोजन पे, ऐसा भोजन अपनी थाली लो, बाबा सूक्ष्म कहते कितने दूर है, थाली लो सूक्ष्मतन में पहुंच जाओ। अभी नई नई शादी हुई ना, नई शादी होती है ना, तभी क्या करते हैं, 2-4 दिन करते हैं, उसके बाद नहीं करते। पति पत्नी को खिलाता है, पत्नी पति को खिलाती है ना, है ना। तो आप बाबा को खिलाओ, बाबा आपको खिलाए, है ना, राइट। ऐसे भोजन खाना चाहिए, और मुंह से कभी बोलना नहीं चाहिए खाना खाते खाते। मुंह से जब बोलते तो मुंह से हवा भी खा लेते, हवा खाते बीच में खाना, बीच में हवा, एरोफिजे कहते हैं, फिर वो खाना पचता नहीं, गैस ही बनती रहती है, और अजीब सी फीलिंग होती रहती है ना। तो कभी खाना खाते कभी मुंह बंद करके, मुंह में खाना डाला, डब्बा बंद, फिर अंदर अंदर चबाओ, ठीक है। फिर खोलना है तो फिर पूरा हो जाए, फिर उसको डालो, डब्बा बंद, डब्बा ढक्कन लगा दो, फिर अंदर चंदर चलो, ठीक है। तो खाना हमेशा निगल, खाना पीना चाहिए, इतना चबाओ कि निगलना ना पड़े, और पानी क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, घूट घूट करके पीना चाहिए। तो शुद्ध सात्विक भोजन, उसका योग लगेगा। फिर सत्संग, बाबा और मुरली का संग, ये टेलीविजन देखना, अखबार देखना, ये सब चीजें फालतू की चीजें देखना बंद कर देनी चाहिए। ये सीरियल देखूं, ये देखो वो तो रामायण आ रही, महाभारत आ रही, ये आ रहा है अशोक चक्रवर्ती अशोक आ रहा है, ये वाला आ रहा है, वो वाला आ रहा है, अरे वो मर गया बेचारा, उसको देखते रहते, है ना। तो वो सब धंधे छोड़ के बाबा और बाबा की मुरली का संग, और चौथा दैवी गुणों की धारणा। कभी गुस्सा मत करो, कभी भी किसी बात में किसी से ईर्ष्या मत करो। एक बार गुस्सा किया 3 दिन तक योग नहीं लगेगा, एक बार मूड ऑफ किया 5 दिन तक अच्छा योग नहीं लगेगा, मुरली अंदर जाएगी नहीं। इसलिए समझदारी बन के, अच्छे बच्चे बन के बाबा के, है ना, फिर योग लगेगा, नहीं तो योग लगेगा नहीं। ओके, ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। ठीक है, आपको जो भी कहना है अभी बाबा को बोलना, बाबा डॉक्टर को बोल देंगे। ठीक है,
हाँ। शांतिवन में क्लास है।
ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।